आई हेट रियलिटी शोज. रियलिटी शोज में मॉम डैड पे गाने गाए जाते हैं जिसमें मॉम डैड को बहुत लाचार दिखाया जा रहा है. जस्ट बिकॉज दे लव यू ब्लाइंडली वो तो बोलेंगे मेरा बेटा कितना अच्छा, बट डीप इनसाइड उस बाप को उस माँ को बुरा लगेगा शायद मैं अपने बच्चे के लिए वो कर नहीं पाया, मेरा बच्चा ही गा रहा है. मेरे मम्मी को शो पे बुला लिया, पापा को बुला लिया, यार वो पेरेंट्स है, वो तो एनी डे इमोशनल होंगी. तुमने कैमरा क्लोज कर दिया कि इनके मम्मी पापा रो रहे हैं, फिर मेरे पे, फिर वो मैंने और पीछे साउंड चल रहा है. मैंने यार ये नहीं चाहिए. रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी, कह रहा मैं रैपर हूँ, कह रहा तेरे को पता कल को मेरी माँ बीमार हो जाती है, कह रहा मैं हॉस्पिटल लेके भागता हूँ, कह रहा मैं वहाँ जाके ये बोलूँगा मेरा रैप सुन लो और मेरी माँ को ठीक कर दो, कह रहा उसके लिए पैसा लगता है.
आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर एवरी आर्टिस्ट. When did you decide कि मेरे को रैपर बनना है? Because this is a very unconventional road in India.
एक पॉइंट था, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता थी, ये बहुत चीज़ बहुत मुश्किल है. It's like you are going for, you know, cracking some IAS paper something. ठीक है, मतलब वो लेवल है, मतलब क्योंकि you never know कि आपको लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे. कितना भी दिमाग लगा लो, at the end of the day, it's all gamble. You know? So एक चीज़, एक दिन यार मैं ऐसे एक्टिवा में घूम रहे थे, रात को गेड़ी मार रहे थे, जो हम रोज ही करते हैं, अभी भी करते हैं. बस एक्टिवा बदल गई है. तो मतलब वही करते करते यही बात हो रही थी. मैंने कहा यार क्या, मतलब कितना टाइम ही लगेगा इसको. मैंने कहा जो मैं कर रहा हूँ, मेरा एक बड़ा बेसिक सा लॉजिक था. तो उस टाइम पे मेरे इतने व्यूज आ जाते थे कि हमने इतने ट्रैक डाल देते कि हफ्ते में 1500-2000
ऐसे आते. And this
ये ड्यूरेशन था 2018 के नवंबर से लेके 2019 के मार्च तक कह सकते हैं. तो उस ड्यूरेशन के दौरान हम चल रहे थे. तो फिर मैंने वही चीज़ बोली, मैंने कहा यार अगर इतने कम व्यूज आते हैं हमारे, एंड मैंने कहा कितना ही टाइम लगेगा, क्या होगा. सो बेसिकली मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, मिड में नहीं रहना लाइफ में, या तो जीरो और या तो 100 से ऊपर. ठीक है, तो
मेरा था,
हाँ, मतलब मैंने कहा यार एक चीज है, मैं इतने की नौकरी कर लेता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मेरी एक बेसिक सी जिंदगी है जिसमें से मैं इतना निकाल लेता हूँ कि मैं गाना कर दूँ. ठीक है, और बाकी मेरे साथ है ही. तो मैंने कहा अगर मेरा एक गाना ऑन एन एवरेज दो, एक हफ्ते में 2000 सुनते हैं, 2000 बार सुना जाता है, व्यूज आता है उस पर, मैंने कहा मैं हर हफ्ता गाना डालूंगा. तो बड़ी बड़ी सिंपल सी मैथ्स थी. मैं पूरे साल ये करूंगा. और जो मैंने कहा पूरे साल अगर हर हफ्ते 2000 बार सुना जा रहा है, और मैंने वो ग्रोथ ही नहीं हो रही, और वो 2000 बार सुना जा रहा है, मगर हर नया गाना 2000 बार सुना जा रहा है, तो इसका मतलब जब साल के एंड में बैठूंगा तो पता नहीं, 2000 के हिसाब से मेरी मैथ्स वैसे थोड़ी कमजोर है, बट मुझे इतना जरूर पता है कि अच्छे नंबर होंगे मेरे. और साल में जब आपको लाख बार भी सुना जाएगा इन टोटल, तो हाँ वो लोग होंगे दिल्ली स्टेट के अंदर जो सच में जानते होंगे मेरे को एज एन आर्टिस्ट.
ट्रू.
ठीक है, तो मेरा बड़ा सिंपल सा था. दूसरा चीज ये था कि मेरी मम्मी का हमेशा कहना था कि जिंदगी में सिर्फ चाहने से कोई चीज़ नहीं मिलती, पागलपन और जुनून बहुत ज़रूरी है उसके लिए. तो वो एक चीज़ थी. तो मैंने कहा यार ये यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड खोने के लिए कुछ भी नहीं है. तो खोने के लिए कुछ था नहीं, मेरी 10,000 की नौकरी कौन छीन लेगा मुझसे, मैं दूसरी कर लूँगा. पॉइंट ये था. तो मैंने कहा जब खोने के लिए कुछ नहीं तो फिर पाने के लिए बहुत कुछ है. सो आई वॉज लाइक दिस के 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15, मैं बूढ़ा होते होते मर जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है.
हर हफ्ते गाना.
हाँ, मतलब मैंने वो कर लिया था कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बस मुझे करना है क्योंकि मुझे पसंद है. मतलब मैं उस पॉइंट पे था, हम दोनों के उस पॉइंट पे थे हम, मतलब वहां तक भी सोचते थे कि भाई गार्ड की भी नौकरी करनी पड़ी, अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये करना है और जब तक हमारे तब तक करेंगे, बूढ़े हो जाए चाहे. इन द एंड ऑफ द डे मैं बस ये था कि इतना एक्सप्रेशन जो मेरे अंदर है जो मैं वैसे नहीं निकालता, तो मैं इन द एंड ऑफ द डे जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे पास शायद मेरे को ये एक तसल्ली रहेगी मेरे खुद के लिए. वो दुनिया, वो उस पॉइंट पे टच हो गया था कि दुनिया के लिए भी ना हो, एटलीस्ट मुझे हुआ कि मैंने इतने एक्सप्रेशन दिए इस दुनिया में जो वहां पर फ्लो करेंगे और ये अब हमेशा के लिए रहेंगे. कोई ना कोई तो आएगा जो सुनेगा, जिस जो रिलेट कर जाएगा, जिसको लगेगा कि यार ये तो मेरी कहानी है, ऐसा कुछ है.
इंटरेस्टिंग.
यू कैन से मतलब इनसेन हो जाना ना उस चीज पे कि आप अब इतना हो कि मतलब आपको उस चीज से फर्क,
कोई फर्क नहीं,
आप फर्क नहीं पड़ता.
तो हासिल का कैसे हुआ, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट डिड दे.
सो मैं बताता हूँ, मतलब सही मौका आया बताने का. हासिल कभी होता नहीं. एक लड़का था खतरनाक हिप हॉप कलेक्टिव,
ओके,
दिल्ली का ही है. उसमें से एक लड़का है जिसका नाम है संजय. संजय ने कभी 2015 में 16 में एक गाना आया था मेरा जो मैंने YouTube से हटा दिया फॉर सम reasons. अच्छा, वो गाना आज जो मेरा नाम है उसी पे ही है वो गाना.
अच्छा,
ठीक है, उस गाने का नाम यही था, किंग.
किंग, ओके.
मैंने वो हटा दिया फॉर सम reasons. वो सुन के उस लड़के ने मेरे को कभी डिस करा था. तो उसका और मेरी एक म्यूचुअल दोस्त थी. उस लड़की ने मेरे को बताया तेरे को ना डिस कराया एक लड़के ने. मैं कहा ये क्या चीज है. कह रही डिस, हाँ मैंने ये क्या चीज होती है. तो कह रही डिस होती है मतलब एक दूसरे की ना डिसरिस्पेक्ट करना ही करना. मैंने कहा मगर क्यों करा. कह रही ऐसे ही बस उसे लगा तुझे करना चाहिए. मैंने कोई पॉइंट, कोई मतलब कोई रिलेटिव या मैं उसे जानते हो कि मैंने भूले बसरे कुछ. कह रही नहीं, मैंने कहा तू ये कह रही यार दिस इज हिप हॉप. मैं थोड़ा ना थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैंने कहा यार ये क्या नई चीज सुनने को मिली कि आप किसी को जानते नहीं हो, जस्ट बिकॉज आपको कुछ लगा आपने किसी को गाली बक दी. मैंने कहा अच्छा यार, मैंने सुना वो गाना तो उसमें उसने बोल रखा था कि तू के लड़कियां तूने अपने गानों में ले रखी है, तू मतलब समथिंग समथिंग कि तू क्या ही रियल कर रहा है. मैंने कहा मेरे हिसाब से एक लड़का जिंदगी में लड़की अपने साथ रखना चाहता है, एक लड़की एक लड़का रखना चाहती है, और बाकी जिसकी जैसी ऊपर इच्छा हो मन से. मैंने इसमें गलत क्या है, मैंने कहा यार ये मेरे समझ नहीं आया. बट देन मैंने उस चीज का भी तब भी कोई जवाब नहीं है, जब मैं कुछ भी नहीं था मैंने तब भी उस चीज का कोई जवाब नहीं दिया. मैंने कोई बात नहीं, लेट इट बी, टाइम के साथ होगा. एक दो साल बीते, मैंने गाने और बनाए. एक दिन उससे मिलना हुआ, उसकी तबीयत काफी खराब थी, तो मेरी दोस्त जो थी उसकी दोस्त थी, तो मैंने कहा चल मेरे को पता लगा तो मैंने कहा चल मिल लेते हैं घर जाकर. मैं मिला उससे, फिर उसके बहुत टाइम बाद फिर हम पर्सनली मिले, अकेले मिले, बैठे, बातचीत हुई. तो उसने मेरे को बोला, कह रहा भाई सॉरी यार, मैंने मतलब तेरे बारे में हाँ मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि तूने आज तक कोई रिप्लाई भी नहीं करा उस चीज का. मैंने कहा यार मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि मुद्दा था क्या. कह रहा यार चल हो जाता है ये वो. हम बैठे, हमने मोमोज वोमोज खाए बढ़िया नेताजी नगर में. उसके बाद वो चला गया, ठीक है, बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, वो चला गया. दो तीन दिन बाद मेरे पास एक कॉल आता है, ठीक है, जिस बंदे ने मेरे को डिस करा था, ठीक है, दो तीन दिन बाद मेरे पास कॉल आता है एक लड़की का. और तो तब तक मेरी जो दोस्त थी ना, उसके और मेरी म्यूचुअल दोस्त थी, हमारी बातचीत खत्म हो चुकी थी.
ओके.
तो मैं मतलब फोन भी उठाना पसंद नहीं करता था उस लड़की के. फोन आया उस लड़की की आवाज बिल्कुल वैसी जैसी लड़की ने मेरे पास कॉल करा. तो मुझे लग रहा वो मजे ले रही थी, और मैं ऐसा था मैं फोन साइलेंट पे रख के सोता था, ठीक है, और वो वाइब्रेट होता था पता नहीं लगता. उस दिन पता नहीं वो बजाए और मेरी अपने आप आंख खुल गई है, मैंने उठाया नहीं तो वो शायद उठाता भी नहीं. मैं फोन मैंने कान पे लगाया, किसी ने बोला है कि मैं फला फला बोल रही हूँ और ऐसे ऐसे आपकी प्रोफाइल चाहिए. मैंने कहा क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा वही लड़की होगी, और मैं एकदम इरिटेट हो रहा. बट मैं कट करने ही वाला था, उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा नहीं ये वो नहीं पूछ सकती, ये सच में कोई और है. फिर मैंने ध्यान दिया, उसने बोला आप प्रोफाइल भेजो आपकी, आपका नाम किसी ने बताया हमें ऐसे. मैंने किसने बताया, करी संजय नाम है उसका जिसने आपका नाम दिया. और उसने ये बोला कि इस शो के लिए अगर आपको कोई फिट चाहिए तो ये एक बंदा है जिसको मैं जानता हूँ, ये फिट है इस शो के लिए. मतलब वाओ
नाइस.
तो वो चीज हुई मेरे साथ. फिर मैंने प्रोफाइल भेजी, उसमें तब तक मेरा माहौल वगैरह आ चुके थे गाने, उन्हें बहुत पसंद आया. फिर उन्होंने मेरे को भेजा. तो ऑडिशन का जो भी प्रोसेस था कि अपनी एक वीडियो बनाओ, टॉपिक्स दिए मेरे को जो भी कहीं सारे शायद कर रहे होंगे, जितने भी ऑडिशन दे रहे होंगे, तो वो सब दिए मैंने, वो सब क्लियर 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 क्लियर. अच्छा, इस दौरान मैंने सिर्फ माइकी को बता रखी थी, मेरे घर में भी नहीं पता थी ये बात
कि तुम असल में ट्राई कर रहे हो.
हाँ, कि मतलब ऐसी. और मैं ऐसा इंसान हूँ भाई जो बिल्कुल रियलिटी शोज नहीं देखता है, आई हेट रियलिटी शोज. मतलब मैंने फोन पे ये बात बोल दी थी. मैंने यहाँ पर कुछ भी फिशी हुआ ना, मैंने कहा एक तो पहली बात तो मैं अपने पेरेंट्स को, मैंने कहा मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि तुम कि मेरे मम्मी को शो पे बुला लिया, पापा को बुला लिया. यार वो पेरेंट्स है, वो तो एनी डे इमोशनल होंगी. तुमने कैमरा क्लोज कर दिया कि किनके मम्मी पापा रो रहे हैं, फिर मेरे पे, फिर वो मैंने, और पीछे साउंड चल रहा है. मैंने यार ये नहीं चाहिए. मैंने, मैं पहली चीज तो इंटरेस्टेड इतना हूं भी नहीं, और मैंने अगर ऐसा, उसने बोला ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ट्राई करो. मेरे को भी चलो यार, मैंने कहा करते हैं. फिर हमने दिया, हुआ, वो सारी चीजें हुई क्लियर क्लियर क्लियर. फिर हमारा दिल्ली ऑडिशन था. अब दिल्ली ऑडिशन में ये थ्रू आउट ना, मैं बता रहा हूँ, जो थ्रू आउट मेरी स्टडी भी है, मेरी स्टडी भी अबाउट आर्टिस्ट, बंच ऑफ आर्टिस्ट लाइक व्हाट दे आर डूइंग. तो मुझे क्या करना है, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, दिल्ली ऑडिशन था मेरा, लाजपत में कोई होटल था उसके नीचे बेसमेंट में, मैं और माइक यूज़ नहीं गए. अच्छा, हमने क्या पहना होता, फ्लोरल शर्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल हवाईयन बॉयज बन के गए हुए हम, ठीक है भाई. हम दोनों घुसे हैं और कम से कम देवर लाइक 50 रैपर्स हु वाज वेयरिंग ब्लैक एंड दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एट ऑल,
सब अपनी चौड़ में.
मैंने कहा यार ये कौन सी जगह है, ये क्या है? तो भाई ने बोला भाई ये अंडरग्राउंड है. मैं कहा तो ये बात नहीं करते आपस में. मतलब मैंने कहा सब ब्लैक पहन के बैठे, जो भी बंदा आ रहा था ना आ रहा, चुपचाप बैठ जा रहा अपना, यूं कान में लीड लगाई, नंबर आ रहा, उठ के चला जा रहा. मैं कहा यार ये इतना कूल तो नहीं होना जिंदगी में. अब भाई हमने कुर्सी ऐसे ऐसे लगा लिया आपस में, चार बंदे और जोड़ लिए, हमने महफिल बना दी. हम हंसी खेल कर रहे हैं वहां पर. और सबसे बड़ा फनी पार्ट ये है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, सब जा रहे थे वापस आ रहे थे जा रहे थे. और वो बाहर आके पता है क्या बोल रहे थे, वो बाहर आके ये बोल रहे थे कि यार अंदर कौन बैठा रहा है, दे आर नॉट इवन लुकिंग रैपर्स. मैं कह यार किसी के दिखने से कैसे जज कर सकते हो. मैंने इसको देखा, मैंने इसने मेरे को देखा, हमने एक दूसरे को देखा, मैं कह रहा मैं 14 तारीख को नहीं आने वाला यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि यार मैंने कहा इतना बड़ा अगर कोई शो बना रहा है ऑब्वियसली बेवकूफ तो बैठे नहीं होंगे अंदर। अच्छा मैं वॉशरूम के बहाने निकला, वॉशरूम के बहाने का मेरा तो शीशे वाला दरवाजा था इनका जहां पर इनके ऑडिशन हो रहे थे। तो मैं आया, मेरी नजर गई ऐसे करके, मैंने यूं देखा तो वहां पर क्या होता है, ये स्टडी का हिस्सा है लाइफ का। सो क्या होता है, वो ऐसे बैठा हुआ एक बंदा कुर्सी पे यूं मुंह नीचे करके, इधर जजेस बैठे हुए हैं 3-4, वो नीचे बैठा है और ना यूं कर रहा है और वो यूं देख रहे हैं उसे, इतनी देर में बाहर आ जा रहा है। मैंने एक चीज दिमाग में डाल ली कि जितनी भी बंदे कंप्लेंट कर रहे हैं ना कि वो रैपर नहीं है, उनको कुछ नहीं है, नॉलेज समझ नहीं है उनको, वहां अंदर म्यूजिक तक नहीं चला रखा, ये नहीं कर रखा, हमें बस सुन रहे हैं, बोल रहे हैं गाना सुनाओ, सुन रहे हैं और फिर उसके बाद हमें भेज दे रहे हैं, ये क्या होता है, ये है वो है। मैंने कहा पहली चीज तो बॉडी लैंग्वेज ये नहीं रहनी चाहिए इफ आई एम एन आर्टिस्ट। मैंने कहा ये खुद में क्यों खो जाऊं, मैं आए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हूँ, जब बन जाऊंगा तब खो जाऊंगा खुद में, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए पहली चीज तो। और दूसरी चीज मैंने कहा बैठ के तो बिल्कुल नहीं करने वाला मैं, और मैं भाई फ्री माइंड था। मैंने कहा लात मार के भी निकाल दे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो आए ही मजे लेने हूं, वो वाली पॉइंट थी। मैंने कहा मेरे पास जो है मैं वो सुनाऊंगा। तो ये चीज थी, अब मैं उनकी सुन रहा कंप्लेंट क्या है और मैं उसको नोटिस कर रहा कि मुझे क्या नहीं करना फिर उस हिसाब से। अच्छा 56वां मेरा नंबर था, 30 लोगों का हो चुका था और वही लिमिट थी उनकी उन दिन, एक भी बंदे का नहीं हुआ था सिलेक्शन दिल्ली के अंदर, एक भी बंदे का नहीं हुआ था। ऐश्वर्या ने मेरे को देखा, बोला यू किंग, मैंने यस, कहती आप वीडियो में छोटे लगते हो, आप काफी लंबे हो। हां जी
मेरा भी ये रिएक्शन था
तो मैंने कहा हां जी, तो कहती अच्छा, कहती आप जाओ। मैंने कहा बट 56th है। कह रही कोई बात नहीं आप जाओ। सो बेसिकली ऐश्वर्या का भी था रिक्रूटमेंट जो होती है ना, मतलब आर्टिस्टों की, तो शी वॉज ऑल्सो वेरी सैड। अच्छा इस दौरान बीच में एक चीज हुई कि उनमें से एक शख्स निकल कर आया उन जजेस में से रूम में हमारे ऑडिटोरियम में, उसने आके ना 2-3 पॉइंटर्स बोले जिन बारे में शायद मैं और माई की हम लोग बात करा करते थे कि यार ये चीज क्यों नहीं करते आर्टिस्ट। जो बंदा सिलेक्ट करने बैठा है ना उसने भी यही चीज बोली आकर, जो पॉइंटर्स बोले, और मुझे कॉन्फिडेंस आया कि इसका मतलब मैं आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं जो सोचता था वो गलत नहीं है, ये दिक्कतें हैं इसके अंदर। वो आते ही पता है उन्होंने क्या बोला, आते ही सेट कहता यार आप सबको क्या दिक्कत है, आप सबके गाने, वो आगे कहते हैं उनका नाम था विक्रांत जिन्होंने हसल बनाया बेसिकली। सो वो आके कहते, तब तक मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, तो उन्होंने बोला यार दिक्कत क्या है, कह रहे आपके सारे गाने या तो आप किसी से लड़ रहे हो उस गाने में और मुझे नहीं पता आप किससे लड़ रहे हो, या तो आप ये बता रहे हो कि आप कितने गरीब हो और जो मुझे जानना नहीं है। वो कह रहे यार आप इतने अच्छे, आप रैपर्स हो सब कुछ, कह रहे मगर वो चीजें कहाँ है जो आप मतलब जो देनी चाहिए, कह रहे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कह रहा आप लोग या तो आ रहे हो या तो आप इतनी तेज भग रहे हो। अच्छा उन्होंने सिर्फ उस इंसान के अटायर से उसे जज करा, बट दे डोंट नो, क्योंकि जब मैं ये भी कहानी बताऊंगा कि मैंने कब रिस्पेक्ट उस बंदे की करी, उन सब ने 2-3 पॉइंटर्स बोले और वो बड़े निराश से होकर चले गए। उसके बाद ऐश्वर्या ने मुझे भेजा, सो आई वॉज लाइक हो सकता है शायद उनकी लास्ट होप हो के हो सकता है ऐसी आया हुआ, हो सकता है कुछ कर दे मैं अंदर, हाँ ये अलग ही रंग बिरंगा सा दिख रहा है चटकी सा। मैं चला गया भाई रूम में, मैं घुसा हूँ, तब सिर्फ स्टाफ बचा था उनका थोड़ा सा जो बाहर था, होटल का स्टाफ था थोड़ा सा और थोड़े से रैपर्स बचे थे। मैं अंदर घुसा हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ और मैंने अंदर जाते ही, अच्छा ये लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बाकी रैपर्स के अंदर आपका अंदर म्यूजिक सिस्टम होगा ये सारी चीज़ें, तो इसलिए लेके नहीं गए थे। ठीक है, मैं हमेशा अपने साथ एक साउंड बार रखता था छोटा सा,
ओके
मैंने उसी टाइम मैंने अपनी जेब में डाला साउंड बार, मैं अंदर घुस गया साउंड बार लेकर। मैंने जाते ही अपना साउंड बार निकाला है, हेलो हाय बोलते हुए अपना साउंड बार वहीं रख दिया। उन्होंने देखा और मैंने सीधा उनसे पूछा, मैं हंसा, मैंने कहा क्या सुनना चाहोगे आप लोग? तो उनमें से एक जो फीमेल जस्ती वो बैठती कहती दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि चलो किसी ने हमसे तो पूछा हम क्या सुनना चाहते हैं, करी क्या सुनाना चाहोगे? मैंने जो भी आप जैसा भी आप करो, करी चलो सुनाओ मेरे को 3 डिफरेंट ट्रैक सुना दो। भाई मैंने सुनाए 3 डिफरेंट ट्रैक और खड़े होके सुनाया मैंने, ठीक है, और अपना म्यूजिक वहां इंस्ट्रूमेंटल चला के सुनाया। अब ये म्यूजिक का साउंड सुन के, ये चीज सुन के ना अंदर आने दरवाजे पे लोग आने इकट्ठे हुए शीशे से यूं देखने के, चल क्या रहा है अंदर, चल क्या रहा है, ये बाहर था तब, अंदर क्या चल रहा है भाई, चल रहा है बातचीत हो रही है। तो उनमें से एक मेरे से पूछता, जब ये हो गया मेरा सब कुछ, तो उन्होंने लिखा है कि फॉर्म में आपने लिख रखा कान्ये वेस्ट। विक्रांत ने मेरे से पूछा, विक्रांत भैया ना, कि कान्ये वेस्ट लिखा है? मैं गंजी कह रहे आपको पसंद है, मैंने बहुत पसंद है. उन्होंने एक ट्रैक बताया मेरे को, कह रहे आपको पता है वो ट्रैक 90% सैम्पल्ड है वोकल से. मैंने कहा भाई ये बंदा रिस्पेक्ट ले गया. मैंने ये जो जज कर रहे हैं ना बाहर बैठ के, कुछ ही नहीं पता ये बंदा किसी रीजन से है यहाँ पर. उस रूम के अंदर मतलब वो एक चीज थी कि जिस इंसान के आगे मैं सुन सकता हूँ जिस इंसान की कि कुछ बोल रहा है, क्योंकि उसने ऐसा ऐसी डिटेल्ड बताई ना कि वो कह रहे हैं मुझे भी कहानी बस पसंद है मगर उसका रीजन ही है. मैंने कहा अच्छा. उन्होंने बोला अच्छा आपका अगर फोन अगर अगर 2 महीने के लिए आपका फोन ले लिया जाए तो यू कैन से आई वॉज बीइंग कॉकी एट दैट टाइम. तो मैंने अभी ले लो, कह रहे अच्छा. कह रहे और मैंने कहा बस 2-3 दिन में घर वालों से बात करा देना. तो कहते अगर वो भी ना हो तो मैंने कहा कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध के भेज देना. तो हंसने लगे, अब यार दिल्ली वाले लड़के से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम. तो वो हंसने लगे. उन्होंने बोला ठीक है. मैं बाहर निकला, सबकी शक्लें थी मेरी तरफ कि काम डाल दिया लड़के ने आज की डेट में, ये पागल हो रखा था. उनका होटल स्टाफ आके कहने लगा कि सर. तो मेरे को ना वो मतलब वो स्पेक्ट्रम दिख रहा था कि पीपल आर हैप्पी, कुछ कलरफुल हुआ है.
You could sense it.
हाँ, exactly. अब वो दौरान उसी 5-6 घंटे के दौरान जो चीजें मैंने सेंस करी उन 40-50 रैपर्स में आर्टिस्ट में जितने भी आ रखे थे, और मैंने उसके उसी टाइम मैंने क्या चीजें चेंज करी, नहीं तो शायद मैं भी वही करता. तो वो इंस्टेंट वो सारी चीज वो मेरी स्टडी में ऐड हो गया. तो मैंने वो चीज लाइफ में अप्लाई कर दी इन चीजों को लेकर. फिर देन वहां से फिर मेरा बॉम्बे ऑडिशन हुआ. मैं बॉम्बे ऑडिशन करके आ गया हूँ, तब मेरे घर वालों को तब भी नहीं पता है. मतलब मम्मी पापा को मैंने बताया, भैया को फिर भी नहीं पता है. मैं जिस दिन टीवी पे आया ना, अब लगा लो जिस बंदे का फुटबॉल बैकग्राउंड स्पोर्ट्स बैकग्राउंड और नौकरी करता है बंदा अपनी एक, वो एकदम से सडनली आपको टीवी पे दिख जाता है. और वो पहला आर्टिस्ट बनता है जो डायरेक्ट टॉप 15 में, हसल हिस्ट्री में पहला टॉप 15 में सीधा जाता है. अब वो सबके लिए ना ऐसी चीज थी कि मेरे को तो ये तक बोल दिया मेरे दोस्तों ने कि भाई यकीन नहीं हो रहा ये तू है, मैं मान ही नहीं सकता क्योंकि तूने तो कभी ये चीजें करी
नहीं, दिखाया नहीं,
क्योंकि स्कूल वाले जानते थे बाकी वाले नहीं जानते थे. अब मैंने भाई अब होने दो. मैंने अब ये वो वाला पॉइंट जब ऊपर वाले से बोलता था ना, या तो जीरो और या तो सब कुछ चाहिए. मैंने ऊपर वाला दे रहा इशारा कि ले तेरे को दे रहा मौका क्योंकि तू है पागल, तुझ में जुनून. तो मैंने भाई अब लग जाऊंगा, अब दुनिया क्या कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता. फिर शो स्टार्ट हुआ. पूरी वो शो ना एक तरीके से ट्रेनिंग थी कि कैसे अपनी आर्ट प्रेजेंट करनी है. मेरा एक पॉइंट था कि वहां पर बहुत सारे लोग का था कि जीतना है वो चीजें करनी है. मेरा पॉइंट ये था कि यार मैं कितना समझ सकता हूँ क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है. okay. मेरा कोई रैप क्रू नहीं है, मेरे लोग नहीं है, मेरे मतलब मेरे पास इतना कोई वो नहीं है कि मेरे पास वो माहौल हो. मेरे पास वो माहौल भी नहीं था. तो मैंने यहां से जो मैं लेके जाऊंगा शायद वो चीज मेरे को बेटर कर दे. तो थ्रू आउट दैट प्रोसेस मैंने वो सारी चीजें सीखी शो पे, और मैंने एक चीज जान ली कि यार लोगों को गाने चाहिए. पीपल वॉन्ट अ फुल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने मैनू थाम तले और लव यू बनाया था.
So people want the full thing, not हाँ, just one.
Exactly. Like और एक छोटा सा मैंने वहां पर क्रैक करा. मैंने कहा यार अगर मैं अगर अपनी आर्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ तो लोगों को सबटाइटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एक रैप रियलिटी शो के अंदर. मैंने वो इतना पॉइंट पे होना चाहिए कि लोगों को सिर्फ लोग मेरे को देख सकें, उनको नीचे सबटाइटल पे ना देखना पड़े. सो दैट दे कुड सी द होल कैरेक्टर, अ गाय परफॉर्मिंग, हाउ ही परफॉर्म्स, यू नो हाउ ही टॉक्स, समथिंग, ये सारी चीजें.
तो ऐसे व्हाट वर यू डूइंग, बिकॉज़ रैप में यूजुअली सबटाइटल्स पढ़ने की कोशिश लगती है, लाइक
क्योंकि मेरे को अब वही है ना फीडबैक. मेरे को पता है क्या लगा, मेरे को ऑल ओवर द प्लेसेस मेरे को लोगों के फीडबैक आने लगे कि हम लिटरली हिप हॉप को नहीं जानते थे. आपका देखा, एकदम ही आपका शो आया है, हमने देखा है और आपकी परफॉर्मेंस देखी और हमको सब टाइटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें पूरा गाना समझ में, हमने रिलेट करा उस गाने से. वो सारी चीजें ना मुझे फीडबैक के तौर पर मिल ली. मैंने एक चीज जान ली कि मैंने कहा यार शो का ना एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, किसी एक को तो जीतना पड़ेगा. तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं रखता ये उम्मीद कि मैं जीतूंगा, ठीक है. तो मैंने कहा अब जब मैं उम्मीद नहीं रख रहा जीतूंगा तो मैं क्या करूंगा. मैंने कहा मैं परफॉर्म करूंगा सिर्फ अपने गाने. मैंने कहा मैं जो भी लोग यहां से जो मैं जाऊंगा ना तो मैं लोग शायद हो सके 2-4 कुछ तो लोग जुड़ेंगे. उन 2000 व्यूज जो आ रहे हैं मेरे हफ्ते में 4 तो होंगे कम से कम. जीतने के लिए नहीं चल रही थी कहानी अपनी चल रही थी कहानी कि यार परफॉर्म करना है. मुझे था फिर कि चाहे आज निकाल दो मगर मैं गाना दे के जाऊंगा एक. और किस्मत थी हर गाना में दे रहा था, हर गाना बूम हो रहा था, हर गाने के साथ और जनता ऐड हो रही थी, और लोग ऐड हो रहे थे, और फ्लेवर. तो जैसे कि मैंने फ्लोरल शर्ट पहन रखी थी ना, वही कलर मैंने अपने आर्ट में रखा थ्रू आउट द शो. वही चीज मैंने वहां जो सीखी वही चीज मैंने शो पे डाली. अपने कि भाई इंडिया बहुत डाइवर्स है, हर तरह का इंसान है, हर मूड का इंसान है, इमोशन भी डाइवर्स होंगे बहुत, तो मेक श्योर कि तुम्हें सब ना आते हो बट कम से कम 70% इमोशन तो आते हो देने नेशनल टेलीविजन.
इंटरेस्टिंग. व्हाट्स योर ड्रीम नाउ?
सो माय ड्रीम, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू मी ऑल्सो. लाइक मतलब यार इतनी सारी चीजें ना, मतलब अब मैं ये नहीं बोलने वाला यार बैठ के पॉडकास्ट में कि मेरे को ग्रैमी लेकर आना है, ये नहीं, ये करना, वो करना, बट मैंने ना यार एक बड़ी बेसिक सी चीज जानी, रनिंग आफ्टर अवार्ड्स और टाइटल इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट रनिंग आफ्टर लाइक द पीपल हु लव्स यू एंड जो लंबे समय तक मेरे से रिलेट कर सके, जो शायद बुढ़ापे में बता सके कि हम इसको सुना करते थे. दीज आर क्लासिक्स. आर्टिस्ट, ये जो भी इंसान डूअर है और चाहता है जिंदगी में कुछ अचीव करना, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये मिटनी नहीं चाहिए भूख. कई लोग बोलते हैं बड़े गाने होने से क्या हो जाता है, नंबर जाने, गाने अच्छे होने चाहिए. अबे अच्छे हैं तो तभी तो बड़े हैं, ये कौन सा लॉजिक है? कई बातें तो मेरे समझ ही नहीं आती भाई लोगों की.
हाँ, लोग बोलते हैं कि ये मासी गाना है,
ये नंबर, हाँ ये नंबर वाला है, मासी है. आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? कितने लोग उस चीज को सुन रहे हैं? अब लोग बोलते हैं ऐसे तो लोग चिट्टियां कलाएं भी सुनते हैं, तो गलत क्या है उसमें? गलत क्या है उसमें?
पसंद है,
पूरी दुनिया एक ही जॉनर नहीं सुनती. दे लिसन टू डिफरेंट थिंग्स. इफ योर ट्रैक इन योर पर्टिकुलर जॉनर कैन नॉट मेक दिस मच बिग ट्रैक, सो ये चिट्टियां कलाएं की गलती नहीं है, उन्होंने कर दिया. उसमें किसी की गलती नहीं है, इट जस्ट हैपेंड, हो गया. अब आप बोलो नहीं यार वहां टीम भी थी, उनके पास ये भी था, पैसे से क्या नहीं होता. अब पैसे से नंबर ही तो बढ़ा लोगे, इंसान की पसंद थोड़ी खरीद लोगे.
नाइस.
इसलिए मेरा कोट है, खाना और गाना आप किसी पे थोप नहीं सकते. भाई मैं आपको ना अच्छा कोई खाना ना आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई ये खाना ट्राई करो, आपको पसंद नहीं आया ना, आप दोबारा नहीं खाने वाले वो चीज. आप उस टाइम इज्जत भी कर लोगे मगर आप दोबारा नहीं खाने वाले वो चीज. सेम गानों के साथ है, मैं 1000 गाने सुना दूं मगर जो आपको पसंद आएगा और जो आपके पर्सनल है वो आप अलग ही सुनोगे.
पर्सनली सुनो.
तो खाना और गाना आप किसी पे थोप नहीं सकते, मेरा सिंपल सा लॉजिक है. और जब मैं देखता हूँ ना लोगों को थोपते हुए चीजें, कि वो दूसरे को ब्रैक कर रहे हैं ये बताने के लिए कि मेरी चीज देखो ये चीज सही नहीं है, मैं चीज ज्यादा अच्छी कर रहा हूं, लोग देख लेंगे. जब मुझ जैसे बंदे की देख सकते हैं जिसके 2000 व्यूज भी नहीं आते थे, तो यार आपकी क्यों नहीं देखेंगे? कहां दिक्कत जा रही है? दिक्कत जा रही है सिर्फ पेशेंस में भाई. ये खेल है सबर का, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है. Nowadays all I see is shortcuts.
What shortcuts? Like
any day, like if I take your name for no fucking reason, that's a shortcut because I want instant hype, instant attention.
Yeah.
ताकि मैं अपनी चीज डालूं लोग मेरे पास आके. But then what's the point?
True.
आपकी जर्नी तो आपको करनी है ना, अगले 10 साल आपको देने पड़ेंगे गाने. मैं कह रहा हूँ आपको मैं अगले 1 महीने की हाइप दे दूंगा या आप मुझे 1 महीने की हाइप दे दोगे. Then what? 1 महीने तो थोड़ी आपकी आर्टिस्ट्री, और आप वही चीज बार बार, आप मेरे को बार बार थोड़ी वही चीज करोगे. लोग बोलेंगे यार ये तो यूज टू हो गए हम, है ना. तो और भाई हम रोज नए साउंड सुनते हैं, हम यंगस्टर्स जो इंडिया के हैं ना, जो हमारी जो यंग जो जनरेशन है, हम हमारे सो हेजेमनी कुछ इस हिसाब से ना वेस्टर्न उसकी और बहुत मिक्स्ड हो गई है. अब हमने अपने फेवरेट्स खुद चुन लिए हैं और हम चेंज भी करते हैं उस हिसाब से. आप नहीं थोप सकते किसी पे. वो अगले महीने आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर लेंगे. एंड देन दूसरी चीज, नो मैटर व्हाट, हाउ मेनी डिफरेंट साउंड्स यू गिव, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रैक्स यू गिव, बट द पॉइंट इज अगर वो आपको पसंद करते हैं वो आपके साथ टिके तब तक रहेंगे जब तक आप तरक्की दिखाओगे. पॉलिटिकल पार्टी को लोग वोट इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने तरक्की दिखाई होती है. किसी भी बड़े कलाकार को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसने तरक्की दिखाई होती है. वो वहीं वहीं नहीं है, कुएं का मेंढक नहीं है. मैं कुएं के अंदर से आवाज नहीं लगा सकता, बाहर बैठे सब बेवकूफ हैं. मेरे को खुद भी कुएं से बाहर निकल के आना पड़ेगा. अगर मैं कोशिश कर रहा हूं ऊपर से लोग देखेंगे हायर कोशिश कर रहा है, इसे पसंद करते हैं, मतलब आई होप समझे लोग इसे कि चल यार कोशिश कर रहा है निकलने की कुएं से बाहर. बट वो देखें सिर्फ मैं हाथ मार रहा हूं, मैं इसे बक रहा हूं, मैं इसे बोल रहा हूं, इसे बोल रहा हूं, मैं हाथ मार रहा हूं मैं, मगर ऊपर नहीं आ पा रहा, तो दिक्कत मुझमें. मुझे ही समझना चाहिए बाहर वाले बेवकूफ नहीं है, वो तो उठ के चले जाएंगे, चलो यार कोई नहीं कोई और कुआं देखते हैं, या छोड़ो आज कुएं नहीं देखते. आप नहीं थोप सकते. मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, बैठा चुका हूँ अपने दिल दिमाग में कि मैं किसी पे कुछ नहीं थोप सकता. मैंने बस ये निकाला कि यार मैं रिलेटेबल चीजें रखूंगा. मैं ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि जो बंदा बोले यार ये मेरी लाइफ नहीं है, या तो वो चीज ऐसी लिखी होनी चाहिए कि बंदा बोले ये लाइफ मेरी होगी. मोमेंट है उसमें से एक है. मेरी खुद भी लाइफ वो नहीं थी जब मैंने वो लिखा है, बट उसमें से वो एक बना. सो वो चीज है, देयर इज अ ब्रिज बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम.
Okay.
My art, in when I do that particular kind of track, you know, my art is like that bridge that connects from your reality to your dreams.
This is my reality and one day I'll make it this.
Exactly. No matter what log kya bolte, main ek din wahan pahunchunga.
Very interesting.
So this was my whole point, matlab.
You have made so many tracks. Few have worked, few have not worked. You know about it, right? So, ab koi aisa pattern recognize kiya hai? Ki yaar, ye chalta hai, to ab main aisa karunga. I'm sure, kyunki, because as you grow, artists get smarter.
Yeah, yeah.
And more than smart, I see the artist start understanding the audience and himself.
Exactly, that's what my point is. Main hamesha ye cheez bolta. And in fact, see bro, I'm a person जो शायद interviews और podcast देना पसंद नहीं करता. मैं मतलब मैं अपनी ऐसी भी स्टोरियां नहीं डालता. मैं चीजों की स्टोरियां डालता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है. मैं हसल में भी ऐसे था भाई. मैंने कोई मिर्च मसाला नहीं दिया. मैंने कभी नहीं बताया मेरी बंदी छोड़ के भग गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो. मैंने कभी ऐसी कोई चीजें नहीं बोली कि मैं इतने गरीब घर से आता हूँ. मैंने इनफैक्ट वहां पर एक उसूल ट्रैक गाया जिसका पॉइंट यही था कि गानों में रियलिटी शोज में मॉम डैड पे गाने गाए जाते हैं जिसमें मॉम डैड को बहुत लाचार दिखाया जा रहा है. जस्ट बिकॉज दे लव यू ब्लाइंडली वो तो बोलेंगे मेरा बेटा कितना अच्छा, बट डीप इनसाइड उस बाप को उस माँ को बुरा लगेगा यार, शायद मैं अपने बच्चे के लिए वो कर नहीं पाया, मेरा बच्चा ही गा रहा है. मेरा भाई, मैं वहां सोचता हूँ
डीप.
इसलिए मैंने वो उसूल गाया जिसमें भाई वो गाना सुनोगे, वो गाना इस बारे में कि एक बाप इज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिज सन एंड सेइंग कि जो मैंने तेरे को सिखाया ना जिंदगी में, जो मॉरल्स, वो जा और दुनिया को सिखा. यूज योर आर्ट दैट वे. You wanna make it.
Dude, this is... I've never thought about this. मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं. What you're saying is so deep.
Exactly. मतलब मैं वो चीज सोचता हूँ कि तो उसमें एक लाइन है कि कलाकार बेटा बनते नहीं लकीरों से, कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा. सो एक बाप अपने बेटे से कह रहा है बेटा कली लकीरों पे नहीं लिखा होता बड़ा बनना जिंदगी में, इस पे हाथ रख दे. अगर ये कला है ना, इसके ऊपर अपना हाथ रख दे, वो बन के ये कला नाचे तेरे नीचे, तेरा नाम अपने आप हो जाएगा. तू किंग नाम से कहलाएगा, तेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी बताने के लिए लोगों को. मैंने वो सीखा है लिटरली अपने घर के अंदर. मैंने वो चीजें ली हैं. मैं वो चीजें नॉट एज एजुकेशन, बट मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे सुने वो चीज को समझे कि जिंदगी के बेसिक्स क्या है. बींग कूल, लुकिंग कूल इज समथिंग डिफरेंट, यू नो. स्टिकिंग टू योर रूट इज समथिंग डिफरेंट,
वेरी डिफरेंट,
और वो हमेशा होना चाहिए. सो यू हैव टू बी स्मार्ट. और सबसे बड़ी बात भाई, जब आप खुद लेके चलते हो ना चीजें, जब आप पूरा घर खुद से बनाते हो ना, तो आपको पता होता है कौन सी ईंट कहाँ लगी है, कौन सी टूटी है, कौन सी बनी है. आपको पता होता है, ये लोगों को नहीं पता होता. जिन्होंने घर लोगों ने बना के दे दिए या जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, तो आधों के घर बने ही नहीं, आधों के घर बन गए, उन्हें पता ही नहीं है. तो मुझे हर उस चीज की कदर है भाई जो खुद से कमाई है. लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, स्क्रैच, फकिंग स्क्रैच. तो मेरे लिए हर एक चीज जश्न है भाई. अब मैं तुम्हें मेरे जश्न से दिक्कत है, फक ऑफ. मुझे है, मेरे लोगों को है, उन्होंने मेरी स्टोरी जान, वो जानते हैं मेरी चीजें, और इस बात का कोई घमंड नहीं है भाई. इस बात का फक्र है मुझे इस चीज को लेके.
ऑफ कोर्स होना भी चाहिए भाई. लाइक व्हाई टू होल्ड इट बैक.
तभी तो वो लैम्बोर्गिनी सच में कैसे लेनी है मेरे को पता होगा. और इस बीच में ना पता क्या होता है भाई, कई बार ना आपकी चाहत के बीच में ना सवाल ये भी आते हैं कि क्या मुझे सच में चाहिए नहीं चाहिए, है ना. वो भी एक चीज,
बहुत बार
कई बार आप यू नो जस्ट ले लेते हो कोई चीज कि जस्ट बिकॉज आपके पास आ रहा है. भाई मनी फ्लो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उसको बनाना पड़ता है. बहुत सारे आर्टिस्ट भाई वन शॉट मनी में बिलीव करते हैं. आई बिलीव इन पैसिव इनकम.
ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग.
या ब्रो, आई बिलीव इन पैसिव इनकम क्योंकि भाई ये कोई सरकारी जॉब नहीं है. ठीक है,
कभी भी जा सकते.
एग्जैक्टली, मतलब भाई मैंने देखो, मैंने लाइफ के दो अलग चीजें करी हैं और दोनों बहुत अलग है. स्पोर्ट्स और म्यूजिक, दोनों की एक खासियत है, दोनों ही लाइफ टाइम नहीं चलते.
ओके,
दोनों ही लाइफ टाइम नहीं है. अब आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे हम अभी भी कहीं स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर गेटिंग मनी, पैसिव मनी चल रहा है. आर्टिस्ट्री में आप बहुत कम ऐसे आर्टिस्टों को देखोगे जिनका पैसिव मनी है. ठीक है, और अभी जो यंग जो सीन है ना, उसमें दे आर नॉट गिविंग फक अबाउट इट. दे आर जस्ट गेटिंग द मनी, दे आर जस्ट गेटिंग द पेचेक, एंड दे आर जस्ट स्पेंडिंग इट हियर एंड देयर, एंड दे आर जस्ट फ्लैशिंग ऑन इंस्टाग्राम विच इज अ फ्री प्लेटफॉर्म. पीपल आर डूइंग वाओ, ओ माय गॉड, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. But they don't know one thing, that if a label, if someone pays you something, they are paying you for some reason. They want the recoupment.
Yeah.
There's a word called recoupment. ठीक है, जो आपको दिया है वो उससे पहले वो recoup करेगा, फिर उसके बाद ऊपर कमाएगा.
Yep.
वो भी एक process है. भाई बिना वजह के तो घर वाले पैसे नहीं देते.
Label क्यों देगा?
उनको भी business क्यों देगा? Exactly. और वो तो business है भाई. अब लोग कहते हैं, कई लोग के भाई यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता. यार आप रिश्ते बनाने आए, आप काम करने आए हो. ये पहला पॉइंट है. मतलब मैं यार, मैं ना थोड़ा, दुनिया ने एक पहलू को सोचती है, मैं थोड़ा वो इंसान हूं जो एक पहलू को सोचता है फिर उसका दूसरा भी सोचता है. वो चीज है कि क्यों है ये चीज.
ओके, मेरे को लेट्स टेक इट लिटिल स्लो. आई वांट टू अंडरस्टैंड फुल म्यूजिक बिजनेस. ओके, मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है, मुझे समझना
होता है. मेरे लिए भी बहुत है.
हाँ, कि जैसे हसल के, लेट्स गो बैक टू द हसल टाइम. हसल के तब गाने फटने लगे.
ओके,
स्टार्टेड हैपनिंग.
चलो कोई तो इस बारे में बात कर रहा है. हाँ, पता नहीं इसको लोग, मैं चाहता हूँ यार हमेशा कोई कुछ ले ले इन चीजों से, समझ ले.
नाउ वांट टू अंडरस्टैंड. सो नाउ तो ये यूट्यूब पे ऑन योर ओन चैनल वो भी बढ़ने लगा. ठीक है, बाहर नाम होने लगा. आई एम श्योर कि शो के लिए इंक्वायरीज आने लगी होगी. क्यों? तो उस टाइम पे, अब पहले तो ये बताओ कि एक आर्टिस्ट कितने तरीकों से पैसे कमाता है. एक म्यूजिक आर्टिस्ट टुडे यू आर हियर, व्हाट आर द वेज टू मेक मनी.
बेसिकली मैं बताता हूं, जो टेबल के ऊपर ऊपर की चीजें, शोज,
ओके,
योर यूट्यूब मोनेटाइजेशन, योर रॉयल्टीज जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से आती है, एंड योर सम ऑफ योर पब्लिक अपीयरेंसेस एज वेल,
ओके,
डील्स, ब्रांड डील्स के अंदर कई बार सिर्फ गानों वाली नहीं आती, कई बार सिर्फ क्लोथिंग वाली आती है. वो भी, उसमें भी बहुत सारे वेज है. अब डिपेंड करता है आप कौन सी डील कर
रहे हो. चश्मा पहनने के दे दिया पैसा, घड़ी पहनने के,
गानों वाली आती है उसका वो अलग होता है. ठीक है, तो ये सारे तरीके होते हैं चीजों के. सो मैंने जब हसल करा तो मेरा चैनल कभी मोनेटाइजेशन के लिए ऑन ही नहीं था. मुझे, मैं क्योंकि ऐसा सोचता था क्या ही बन जाएगा इससे.
हाँ.
क्या ही हो जाएगा इससे. मैंने जब हसल करा तो मेरी नौकरी जा चुकी थी.
ओके,
मेरे अकाउंट में लिटरली 2100 रुपए पड़े हुए थे. मैं और मेरा दोस्त, हम सर पकड़ के बैठे हुए थे. वो जिंदगी में पहली बार मैं बैठा हुआ था कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नौकरी भी नहीं कर सकता, अब क्या करूंगा. देन फिर मैं रफ्तार भैया से मिला शो के बाद बैठे, और उन्होंने भरोसा दिया. उन्होंने बोला तू 2 महीने रुक जा, तू देख लियो, तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की. 2 हफ्तों के अंदर चीजें ऐसी हुई कि मेरे को शो की इंक्वायरीज आई. मैंने शो करा, मेरे को तब यूट्यूब की, फिर हमने ऑन करा यूट्यूब मोनेटाइजेशन. सारे पेपर वर्क करे यूट्यूब के. यूट्यूब का पहले मेरे को 2 चेक आए. पहले चेक आया मेरे को, सो मेरे को इन टोटल मुझे याद है 114,000 मिले थे मेरे को.
ओके,
मेरी कान फट गई थी 114,000 देख के. मैंने कहा फक,
यूट्यूब ने
भाई अब तो सीरियसली लूंगा इस चीज को. हाँ. क्योंकि जिसके अकाउंट में 2100 रुपए पड़े हो और कल का ना पता हो उसके अकाउंट में ऐसे आ जाए पैसे. हाँ, तो मतलब वाओ. अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार का वो हूँ यहाँ पर कि मैं बोलूंगा मैंने हमेशा पैसा बचाया. नहीं, कई बार आप ना बहुत चीज समझते हो कई चीजें गंवा के. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं ब्रोक हो गया, बट हाँ मैंने पैसा उड़ाया भी है. आज मैं समझ सकता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मेरे खर्चे क्या हैं, मुझे क्या करना है, और मेरे को क्या कहाँ पैसा डालना है और कहाँ नहीं डालना.
ओके,
ये चीजें मैं टाइम के साथ सीखा. ये अब बिजनेस है.
ये
म्यूजिक बिजनेस आ जाता है यहाँ पर. मैंने और मेरे दोस्त ने एक लाइन खींच दी थी. मैंने कहा देख, पेटी से नीचे का शो नहीं करना. मैंने सूखी रोटी खा लूंगा मगर नहीं करना. क्योंकि ना यार आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपकी ब्रेकडाउन वैल्यू है क्या और किससे आप नीचे नहीं जाओगे.
ओके,
मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा ड्यूरिंग दैट के उन्होंने बहुत चीप रेट्स में भी शो करे. उन्होंने का था कि मिल रहे हैं, यही टाइम है, ले लो. यहां वही थॉट आता है. मैंने बोला ना कि कई आर्टिस्ट वन शॉट इनकम में बिलीव करते हैं, मैं पैसिव इनकम में बिलीव करता हूं. मैंने कहा अगर मैं ये सेट कर दूंगा ना तो मैंने ये प्राइस सेट हो जाएगा. बेशक महीने की एक क्वेरी भी अगर मैं कर रहा हूं तो मैं 1,00,000 रुपए मैं आराम से चला सकता हूं अपना महीना, और बहुत सारी चीजें कर सकता हूं. मैं और गाने बना सकता हूं, आई कैन मेक मोर वीडियोस ऑन स्टफ. तो मैंने उस चीज को ऐसे लिया.
तो अभी आज एज एन आर्टिस्ट यू टॉक्ड अबाउट कि 4-5 जगह से पैसे कमाते हैं. सबसे ज्यादा पैसे कहां से आते हैं इंडिया में आर्टिस्ट को? शोज से, स्ट्रीमिंग से, कि यूट्यूब से?
शोज एंड योर रॉयल्टीज.
ओके, रॉयल्टी इंडिया में सीन बड़ा है? नहीं,
मेरे लिए तो बढ़ गया. मुझे नहीं पता बढ़ा है कि नहीं बढ़ा. या डिफरेंट डिफरेंट डील्स भी होती हैं.
ओके,
कई बार ऐसा होता है कि
रॉयल्टी इज व्हिच यू साइन विद अ म्यूजिक लेबल. क्या होता है रॉयल्टी?
मैं बताता हूँ. सो मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मेरी रॉयल्टी, मैं अपने गाने डालता हूँ, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है. वो मेरे को रॉयल्टी कलेक्ट करके देता है.
ओके,
वो बोलन सोन मेरे ट्रैक्स हैं. अगर मैं किसी लेबल के पास जाता हूँ तो वहां पर भी डील्स होती हैं. जैसे कि कई बार क्या होता है, आर्टिस्ट कहाँ पर हो जाते हैं कि वो बोलते हैं हम तुम्हें एक बार में दे रहे हैं पैसा, तुम्हें एडवांस दे रहे हैं तुम्हारी रॉयल्टीज. आपको कभी ये चीज पता ही नहीं लग पाएगी कि आपका कौन सा गाना फेनोमेना हो जाए और आपका वो लेबल उससे कहीं ज्यादा कमा जाएगा जितना उसने दिया आपको. और आपने अपने बिगिनिंग में कभी अपना राइट अमाउंट रखा नहीं ब्रेकडाउन का. तो बोलते हैं आन दो. फिर रिक्रूटमेंट वाली चीज भी आती है. ठीक है, ये सब भी चीजें. तो मेरे लिए मेरे ट्रैक्स मैं अपने करता था तो उससे मेरे को
डिस्ट्रीब्यूशन. यू थॉट कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा, लेबल के साथ नहीं जाऊँ, कोई रीजन है उसके पीछे?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब मैं तो आई एम द मोस्ट फ्रेंडली आर्टिस्ट यू हैव सीन इन द मार्केट. मेरा तो ऐसा है भाई, हाथ आगे बढ़ा रहे हो, मैं तो हाथ मिलाऊंगा, आई हैव गुड आइडियाज, लेट्स डू इट टुगेदर, लाइक आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट विद वार्नर म्यूजिक नाउ, इट्स लाइक गोइंग ग्रेट ऑलरेडी, मतलब सारी चीजें हम साथ में, आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट. यू हैव टू बी स्मार्ट टू क्रैक अ वे जिसमें दोनों का नुकसान ना हो और दोनों का फायदा हो.
नाउ ओके, सो यू सेड कि इंडियन मार्केट को समझ के गाना बना रहे हो, तो ऐसा क्या समझा इंडियन मार्केट के बारे में कि यार ये चीज चलती है, ये चीज बुरी लगती है, क्या होता है ऐसा एक दो चीज?
देखो बुरा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यू नेवर नो किसको कितने लोग सुनते हैं, मतलब किसको कौन सुनता है, पॉइंट है किसको कितने लोग सुनते हैं. ठीक है, मार्केट, अब जब मैं मार्केट की बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट मासेस. फिर इस पे एक टैग आता है कमर्शियल. कई लोगों को ये नहीं पता कमर्शियल का मतलब क्या होता है, क्या नहीं है, क्या नहीं है. वो सोचते हैं जो भी वैक चीज है वो कमर्शियल है. उन्हें ये भी नहीं पता जो उन्होंने कपड़े पहने वो भी कमर्शियलाइजेशन का ही हिस्सा है.
you know, that's
कि मैं नाइकी के जूते पहनूंगा, तू नाइकी के जूते कैसे पहनेगा अगर तुझे नाइकी के बारे में नहीं पता, क्योंकि मासेस पहनता
है. देयर इज एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है बेनी, जो जस्टिन बीबर का बनाता है, बेनी ब्लैंको, व्हाट इज नेम, जो जस्टिन बीबर का लोनली जिसने बनाया है, हिज नेम इज बेनी,
हां
राइट, बेनी. तो बेनी बोलता है दैट कमर्शियल वो है जो आर्टिस्ट अपने ईगो की वजह से बड़े गाने नहीं बना रहे और वो बोलते हैं कि इन लोगों को म्यूजिक समझ नहीं आता.
भाई
ही इज लाइक कमर्शियल इज नॉट जस्टिन बीबर, जस्टिन बीबर इज अ म्यूजिशियन, BTS इज म्यूजिशियन, एड शेरिन इज म्यूजिशियन, Eminem इज म्यूजिशियन, डॉक्टर ड्रे इज म्यूजिशियन.
एग्जैक्टली,
सब अपना आर्ट बना रहे.
एग्जैक्टली,
जिसका हिट हो गया उसको कमर्शियल नहीं बोलते भाई.
एग्जैक्टली.
तो या आई डिडंट लेट यू कंप्लीट कि मतलब ऐसे क्या समझा इंडियन मार्केट के बारे में कि क्या पसंद.
सो मैं इसका भी बड़ा सही जवाब देता हूँ. इंडियन मार्केट के लिए ना ये चीज समझा कि देखो हमारा ना कल्चर है, हमारा कल्चर इज मेलोडी ड्रिवन, कंपोजिशन ड्रिवन. ठीक है, हमारी जनता ये है, वी आर नॉट टू मच लिरिकल ऑफ अ पीपल, वी आर लाइक मोर लाइक शायर पोएट्स. ये हमारा कल्चर
है, वो धुन धुन रह जाती है.
मैं वही है ना कि मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमें, हम वो हैं, हम इंडियन लोग वो हैं कि हमें तुम्हें समुंदर कैसा होता है दिखाने के लिए समुंदर के पास ले आने की जरूरत नहीं है. हम दो बातों में हमें समझा दो, हम समुंदर अपनी आंखों से खुद देख लेंगे. हम इतने गहरे होते हैं.
True.
हम तो मतलब ये कोर मैं जानता हूं, ये हमारा कोर है. अभी हम खेल रहे हैं सिर्फ हाइप और क्लाउड पे. ये कूल है, ये कूल है, ये कूल है, हम उस पर खेल रहे हैं. बट डीप इनसाइड तेरे लिए करा मैंने लव, तूने करा मेरा हार्ट ब्रेक. कूल रहेगा, लोग सुनेंगे कूल कूल, बट कितने समय तक उस चीज को सुनेंगे ना, वो मैटर करता है. तो मेरा म्यूजिक भी ना पैसिव इनकम की तरह ही है भाई,
लंबे समय तक चलता,
लंबे समय तक चलना. इसलिए लोग आज भी जितने लोगों को नाम से पता है गाने, लोगों को पता है किस गाने में मैंने क्या बात बोली है, वो आज भी सुनते उनको फ्रेश लगता है. दूसरी एक चीज मैंने ये चीज जानी भाई, देखो बिना इतिहास के ना, बिना बीते हुए कल के आने वाला कल नहीं है, ये मेरा मानना है.
ओके,
हम आज भी अगर मोहम्मद रफी के गाने हमें चला दूंगा ना, कोई क्लासिक चला दूंगा, आप साथ साथ गाओगे, और वैसे आप ना भी सुनते हो तो चलेगा, बट आप गा दोगे. पता है क्यों? कहीं भी उन गानों के अंदर ना ये बात नहीं बोली गई कि कोई भी फ्लैशी वर्ड्स नहीं है कि तेरा मेबेलिन कर दूं मैं क्लीन, ये चीजें नहीं है. दीज आर हाइप कल्चर्स. उनमें है कि तेरी तेरी आंखों में काजल जैसे बादल, जैसे काले बादल. भाई ना आंखों में लड़कियां काला काजल लगाना छोड़ेंगी, ना बादल कहीं जा रहे हैं काले. मैं ये बोल बोल थक गया हूं कि ये चीज समझो. पॉइंट क्या है, हम क्यों उन्हें एवरग्रीन बोलते हैं? एवरग्रीन वो होती है कि हाइप कल्चर आएंगे जाएंगे, जो बात जैसी है ना वो वैसी ही रहेगी.
नाइस.
मेरी आर्ट इसलिए, जब आप मोमेंटे सुनोगे ना, मोमेंटे के अंदर कोई भी हाइप वर्ड नहीं है. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग एंड एग्रेशन. एक दिन होगा रास्ता भी जाम मेरे नाम से तेरी गली का, वो भी एक मोमेंट है. मैंने ये नहीं बोला एक दिन होगी लैम्बोर्गिनी और पूरा रास्ता जाम होगा. लैम्बोर्गिनी आ जा सकती है, मगर मैं अपना रुतबा ऐसा रखूंगा कि मैं आऊंगा उससे जाम होगा. इसलिए वो चीज इतनी रिलेटेबल लगती है लोगों को, इसलिए वो चीज लगती है. तो ये भी एक चीज में जाना, मेलोडिक चीजों के अंदर कॉम्पोजिशन ड्रिवन होनी चाहिए. इवन इफ यू मेक रैप, ठीक है, आइकॉनिक उसका एक बहुत बड़ा रीजन है.
ओके,
ठीक है, उसमें लाइक कोरस है बहुत ब्यूटीफुल, देन उसके बाद प्रॉपर फ्लोज है, इट्स अ प्रॉपर रैप रैप, और भाई सारा गाना लोग गाते हैं. लोगों ने पूरी बॉडी मिल जाती है. हम इंडियंस सबकॉन्शियसली ना पूरी बॉडी के हिसाब से गाना गाने को फील करते हैं. किसी एक पार्ट, हमें एक पार्ट पसंद आता है, बट गाने की पूरी बॉडी होती है. ऑल दिस बिग म्यूजिशियंस जिनको ये शायद बहुत सारे नए लड़के बोलते होंगे ये क्या ये ट्रैश है, इनको कुछ नहीं पता, दे डोंट नो शिट अबाउट हिप हॉप. भाई हिप हॉप आज से 25 साल पहले ना गानों में करके छोड़ दिए गए हैं, हिप हॉप बीट्स करके छोड़ दिए लिटरली. बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ, वो गाना सुना है, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, अब देखो आप सुनते नहीं होगे मगर याद आ गया आपको गाना, है ना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना प्यार, दिस इज हिप हॉप बीट, इस पे अच्छा लिखा हुआ कंपोज ट्रैक मिक्स कर देना, सोच के देखो वो गाना सबने सुना है और वो कहीं नहीं जाएगा गाना, मैं आज से 20 साल बाद भी किसी पार्टी में बजा दूंगा ना लोग उसी को कहेंगे, ये है भाई, ये एक बेसिक सी चीज है, ये पकड़ पकड़ के खींच रहे अपनी तरफ कि हमारी चीज सुनो, दिस इज शिट एंड दिस इज रियल, यू कैन नॉट जस्टिफाई शिट एंड रियल,
एवरग्रीन,
एंड राइट नाउ यू कैन नॉट इवन जस्टिफाई व्हाट इज हिप हॉप,
दिस इज अ क्लासिक,
कोई चीज स्ट्रीट से बनी है भाई, जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, वो एक्सप्रेशन है, लेट इट बी। अब बाहर देखो क्या होता है, बाहर हिप हॉप के इतने वेरिएशन है ना, अब इतने ड्रेक और इतने वेरिएशन ला चुके हैं ना, नाउ इट्स जस्ट म्यूजिक, इट्स जस्ट म्यूजिक नाउ, जिसको जब हमारे गाने सीड होते हैं ना प्लेलिस्टिंग में स्ट्रीम्स में, तो वो अपने हिसाब से पॉप कैटेगरी में डाल देते हैं हिप हॉप में, दैट डजंट जस्टिफाई कि ये पॉप है या हिप हॉप है, अब चीजें इतनी ज्यादा वो हो चुकी हैं,
बहुत हो गया,
नाउ इट्स जस्ट म्यूजिक, now just people just want one genre, that is vibe,
yeah,
people don't give a fuck, and really the normal people, the masses don't give a fuck, yeah, music itna zyada evolute ho chuka hai ab,
dude I am masses, mere ko gana acha laga, mere liye vibe match ho raha, ho gaya
bas,
I don't care, exactly, hip hop hai, pop hai, exactly bhai, kya hai,
ab socho mere khayal se ab Drake ka sabse bada track phenomena bana Hotline Bling, that wasn't a hip hop track, that wasn't even a pop track, that was just a song,
yeah, that was just the music, yeah,
just a song, apne aap category mil gayi, award bhi mil gaya, sab kuch mil gaya, wo chill baitha hai, ye hai, ye ise kehte hai bhai kalakari, this is called artistry, ye itna simple hai, and all they are doing is fighting for fucking genres,
okay, tell me, like, now that you're talking about genres, and then there's one question about Indian market, or bars, kya we'll talk about money,
yeah,
कि what is the reason जो like what do you feel American artists या international artists different करते हैं Indian artists से, why Indian artists कोई world famous नहीं बन पाया, ऐसा क्यों, like is it only language कि उसके अलावा भी, you know, like how Korean yeah. music language के बिना भी BTS made a worldwide
Spanish
sensation.
music also,
Spanish yeah, Enrique like popped out, पहले वो Spanish में था फिर English he started doing, तो in fact now ये भी बहुत बड़ा होते जा रहा है, ये और ब्राजील साइड
अफ्रोबीट एंड स्टफ,
आई डोंट नो द जॉनर, लाइक यू नो बेटर, बट दैट आल्सो कमिंग अप, इंडिया में क्यों नहीं ये सब हो रहा है, लाइक व्हाई इंडियन आर्टिस्ट आर नॉट वर्ल्ड फेमस,
मैं बताता हूँ, सो इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी है, पहले क्यों नहीं हो रहा है एक साइड का बताऊंगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा, क्योंकि अभी पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा है कि लैटिन म्यूजिक उठ गया है, कोरियन म्यूजिक उठ गया, अफ्रो म्यूजिक भी उठ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता, उसका पहले रीजन दूंगा, इसमें ना हेजिमनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सो इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है, जब अब लोग ये लोग सोचेंगे क्या बातें चल रही हैं यहां पर, ठीक है, जब सुपर पावर अमेरिका बना, आप सुपर पावर कब कहलाते हो, जब आपके पास सबसे ज्यादा तीन चीज सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आपके पास आपकी आपका आर्सेनल लाइक आपका यू नो
गन पावर
मसल पावर मसल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो, फाइनेंस पावर बहुत स्ट्रांग हो, और तीसरा जो होता है आपका कल्चर बहुत स्ट्रांग हो, ये तो हमने पढ़ा भी है, ठीक है, मैं म्यूजिक को वहां ऐसे कनेक्ट करता हूँ भाई अपनी चीजों को, ये तीन चीजें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके, और ये वर्ल्ड फेमस होनी चाहिए, तब आप पावर सुपर पावर कहलाते हो, ठीक है, अब सुपर पावर बनने के लिए एक चीज बहुत होती है, जब आपकी लैंग्वेज, अगर सोचो रशिया सुपर पावर होता ना, तो आज हम सब रशियंस में गाना गा रहे होते, रशियन सुन रहे होते, और इस पीरियड को लगा है 60-70 साल लगे हैं, वहां पर कैसे काम करे गए उस टाइम पर, म्यूजिक को कैसे रखा गया, म्यूजिक को और हॉलीवुड को दोनों चीजों को अलग रखा गया, इसलिए म्यूजिक के वुडस्टॉक फेस्टिवल और बड़े बड़े रॉक स्टार, इसलिए वहां पर एल्विस प्रेसली और सारी चीज पब्लिक फिगर्स और बड़े हो जाने, म्यूजिक को शुरू से ऐसे ड्राइव करा गया वहां पर, अलग हॉलीवुड को अलग ड्राइव करा गया, ठीक है, इंग्लिश ने वहां पर एक बहुत, अब जब इंग्लिश देखो यार, कोरियन बंदे भी इंग्लिश सुनते हैं, हम भी इंग्लिश सुनते हैं, ठीक है, और हर जगह की इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश सॉरी ओके थैंक यू वेलकम, ये तो हर किसी को आता है, इतनी बेसिक इंग्लिश, अब जब इतनी बेसिक गांव के बंदों को भी आती है बाहर देश के, जो बिल्कुल वैसे एरियाज हैं, तो इसका मतलब वो है सुपर पावर, हेजेमनी उसी चीज की है। अब वहां के आर्टिस्ट, अब बाय द टाइम 60-70 साल के अंदर कंट्री ने भी ग्रो करा, जीडीपी भी बढ़ी, बहुत चीजें बढ़ी, तो वो बहुत सारा फाइनेंस लगा सकते थे अपनी चीजों पे, ठीक है। अब ऐसे में गाने किस तरीके से आए और फिर उनकी मार्केट कैसे ड्रिवन हुई कि वो वर्ल्ड वाइड हो गए, आज हम सब वीकेंड ड्रेक वी ऑल लिसन टू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, हम फिर समझने भी लगे, पहले हमें समझ नहीं आते थे, आज से 40 साल पहले वाले लोगों को समझ नहीं आते थे
इंग्लिश गाने,
अब हमें समझ में आता है, हम सुनते ही वो हैं, समझ रहे हो वो चीज कैसे टेक ओवर हुई है बाय द टाइम के मनी, जैसे जैसे कंट्री में आया, जैसे जैसे चीजें बढ़ी, उन्होंने वो चीज म्यूजिक के अंदर भी डाला है,
उन्होंने अपना कल्चर म्यूजिक के थ्रू।
हाँ एग्जैक्टली, और यहाँ आर्टिस्ट सबसे बड़ा पार्ट प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर, हम कोई भी कल्चर को ला सकते हैं इस टाइम पे, जो हम कल्चर जो चल रहा है ना, ये जो हाइप कल्चर चल रहा है, दिस इज ऑल अबाउट हिप हॉप, ठीक है, जिसमें हम अपनी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि बाहर के लोग कैसे पहनते हैं, कैसे रहते हैं। इस चीज को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखता हूँ, सोच के देखो हम अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पर एक विषय, एक स्टडी का विषय ये भी मेरे लिए भी ये चीज है कि भाई लैटिन म्यूजिक कैसे बूम करा, कोरियन म्यूजिक कैसे बूम करा, तो इनकी जो मशीन कल्चर से बहुत जुड़ती हैं ये सारी चीजें, कि क्या हमारा कल्चर, हमारी चीजें, कोर हमारी इतनी स्ट्रांग है और हम जिस कोर में कर रहे हैं वो इतनी स्ट्रांग है, सामने वाला बंदा इंप्रेस हो रहा है उस चीज से। हमारा जो तरीका है ना वो बहुत मिक्स्ड है, ठीक है। बहुत तगड़ी चीज बोलूंगा भाई, बूम करेंगे, मगर पता है क्या बूम करेगा? पंजाबी म्यूजिक। दे आर डूइंग द रियल देसी हिप हॉप। रैपर्स आर फाइटिंग ओवर व्हाट इज देसी हिप हॉप, व्हाट इज नॉट। दिस इज, मैं करता हूं देसी पॉप, दिस इज नॉट देसी पॉप, दिस इज रैप इन हिंदी। देसी हिप हॉप इज एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग। सिद्धू पाजी ने जो करा है, करण जो कर रहा है, दिस इज क्योंकि उनकी कोर लैंग्वेज वही है, उसके आसपास की सारी चीजें इंटरनेशनल कर दी हैं। तो अब वो और हमारे खुद के इंडियंस बाहर रहते हैं, दैट्स व्हाई दे मेक द मोस्ट शोज आउट देयर, यू नो, दिलजीत पाजी ये सब।
एंड पंजाबी म्यूजिक इज हैज ट्रैवल्ड अ लॉट, लाइक आई वाज,
व्हाई, इसका भी बहुत सही रीजन पता क्या है, मैं देसी पॉप क्यों बोलता हूँ उसे, मेरे लिए वो देसी पॉप इसलिए क्योंकि हिप हॉप बीट अर्बन उठाई, प्रोड्यूसर्स ने उस पर तुम भी डाली, थर्ड डाली, हमारे खुद के एलिमेंट डाले, और जो आर्टिस्ट जो गा रहा है ना वो फोक गा रहा है उस पर, वो रैप नहीं कर रहा है, वो फोक सिंगिंग कर रहा है उस पर। अब तो एवोल्यूट हो गई सारी चीज, देयर इज नथिंग रैप, और अब तो कुछ भी है यार, इट्स फ्लोज नाउ, बट वो बंदा वो चीज कर रहा है और बातें वो कोर की कर रहा है और कल्चर की बातें कर रहा है। नाउ व्हेन वी लिसन टू पंजाब म्यूजिक वी सी अ होल डिफरेंट कल्चर,
सो दे आर ब्रिंगिंग देयर, सो वो वर्ल्ड से बेस्ट चीजें उठा रहे हैं Exactly. और अपना खुद का फ्लेवर उसमें मिक्स कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को न्यू लग रहा है।
एग्जैक्टली,
तो जब वो न्यू लग रहा है तो
जब वो ढोल का साउंड बेस के साथ सुनते हैं ना, काले और गोरे, वो फ्लिप हो जाते हैं, वो ये क्या चीज है, यू कॉल इट ढोल, वो फ्लिप हो रहे हैं भाई उस चीज पे लेके। ये इस जगह पे मैं सैल्यूट करता हूँ कि दे आर डूइंग देसी हिप हॉप, देसी हिप हॉप इज नॉट रैप, इट्स अ म्यूजिक व्हिच इज ब्लेंडेड विद इंटरनेशनल साउंड, दिस इज देसी हिप हॉप। इसमें मत लड़ोगे रैप किसने करा है, किसने क्या करा है, ये बेवकूफ वाली ये चीज शायद मेरे ख्याल से इस, ये एक रीजन है जो नहीं बढ़ पाएगी ये चीज, और यही एक रीजन है ये वाला दूसरा वाला जो चीज जाएगी ग्लोबल,
कि हम दूसरे लोगों को देखने में इतना बिजी हो गए दैट वी फॉरगॉट अवर ओन,
हम हाइप कल्चर में इतना ज्यादा घुस गए कि हम अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं,
क्या आइडेंटिटी बोल
भाई, इसमें बार्स नहीं थे, अबे हमारा कल्चर बार्स वाले नहीं, तू फील देखना भाई कितनी है, सिद्धू पाजी बार नहीं मारा करते थे, बातें हैं भाई, बातें हैं, दिस इज व्हाट वी फ्लेक्स व्हेन वी सिट इन कार, हम बजाते हैं वो चीज, हम नहीं बजा रहे होते एक मिनट में कितने शब्द बोल दिए इस बंदे ने, बातें वो बोलियां हैं, पोएट्री है, शायरियां हैं, वो ब्लेंडेड है, दे आर डूइंग हिप, दे से हिप हॉप इन रियल सेंस, एंड यू नो व्हाट, दे डोंट इवन फाइट अबाउट इट, दे डोंट इवन गिव अ फक कि हमें हिप हॉप में रख रहे हो या नहीं रख रहे, दे आर जस्ट डूइंग इट, हम बहुत जल्दी ब्रेक डाउन करने वाले, बहुत बड़ी बड़ी चीज है मार्केट के अंदर, बहुत बड़ी चीज है, सबकी नजर इंडिया पे इस टाइम पे।
नो इट्स ट्रू, मैं पता है, 2019 में रोमानिया करके एक कंट्री है, उस रोमानिया में एक छोटे सा, देयर इज अ स्मॉल सिटी कॉल्ड टिमिशोआरा, लोगों को पता भी नहीं है, उसके एक बहुत ही रैंडम क्लब में बैठा था और वहां पंजाबी म्यूजिक बजाया था, ना आई वाज लाइक भाई ये कैसे,
एंड यू नो व्हाट, सो हम बहुत डाइवर्स है इसलिए वी कैन से दैट इज पंजाबी म्यूजिक. दोस पीपल से इट इज
इंडियन म्यूजिक. या फॉर देम इट्स नॉट इंटरेस्टिंग. फॉर देम इट्स इंडियन.
इट्स इंडियन म्यूजिक.
वाओ.
ये ना ये समझने वाली बात है. आर्टिस्ट जितने भी है ना ये जो एक दूसरे को समझने वाली बात है ये कि बाहर वही इंडियन म्यूजिक रिप्रेजेंट हो रहा है. वो इंडियन म्यूजिक हम यहाँ बोलते हैं पंजाबी म्यूजिक है. क्यों है ऐसा? आप क्यों नहीं सीख पा रहे वो चीज? वो लोग ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? मेरे लिए रिप्रेजेंट, मेरी नजर में मैं खुद एक कलाकार हूं भाई, मेरे लिए ग्लोबली वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने साउंड पे उस तरीके से काम करा. उन्होंने यूके की ड्रिल बीट नहीं उठाई, उन्होंने ड्रिल बीट भी उठाई है तो उसके साथ भाई उनकी लिंगो वही है.
They've blended their own taste.
और भाई इंग्लिश को ब्लेंड करके बोलते हैं.
हाँ.
अपने हिसाब से बोलते हैं. मतलब ये काबिल तारीफ है भाई. हाँ. किसी और के लैंग्वेज को आप ऐसा तोड़ के अपने साथ पेल दो गाने के अंदर पे, ऐसकी आपको दिक्कत ही नहीं.
और फिर वही लैंग्वेज वाला तुम्हारे जैसे गा रहा है.
स्ट्रीटा स्ट्रीट्स स्ट्रीटा. तो आप फर्क ही नहीं बता सकते पंजाबी है इंग्लिश है. They are doing it. They are not fighting over it. They are just doing it. जिस दिन लड़ना बंद कर दोगे ना उस दिन भला हो जाएगा, उस दिन सिर्फ काम होगा.
As an artist, how do you manage your money? Like knowing that कल पता नहीं तुम्हें होगा या नहीं होगा. हो सकता है कल आज से 10 गुना बढ़ाओ, 100 गुना बढ़ाओ, 1000 गुना बढ़ाओ, बट हो सकता है कल जो आज है वो भी नहीं हो. राइट. सो हाउ डू यू मैनेज योर मनी? लाइक
इसका बड़ा सिंपल सा, हाँ मतलब इसका बड़ा सिंपल सा है. और ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, इट्स अ बिजनेस. किसी भी चीज का बिजनेस हो, सो कोई भी चंक मनी जो आपको मिलता है बिग चंक, अगर आप उसको रखे रखो वो बिग चंक खत्म होता है.
yeah.
और अगली बार आपको बिग चंक, कोई ऐसे नहीं कि अगले बार आपको वही बिग चंक मिलेगा. ठीक है. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंसेज, योर प्लान्स एंड स्ट्रेटजी. ठीक है. अब आपको एक बड़ा चंक मिला, आपने उसके छोटे छोटे हिस्से करें. अलग अलग जगहों पर डालें जहां पर आज नहीं तो 2-3 साल बाद वो चीज अलग ग्रोथ करेगी. वो आपके बड़े चंक को डबल नहीं करेगी, मगर जितना आपने पार्ट डाला, आपने एक डाला तो वो 2 कर देगी, तो वो एक, और वो 2 को 4 कर देगी, तो वो एक अलग चंक बन जाएगा. आपने ये सब ऐसे ऐसे करा, इन द एंड जब आप देखते हो तो आज से 10 साल बाद वो बहुत बड़ा चंक बन चुका है. आपको शायद दोबारा किसी से बड़े चंक की जरूरत ही ना पड़े. ये बिजनेस में भी यही चीज है. यू आर डूइंग बिजनेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, यू नो इट. तो वो चीज ऐसे काम करती है.
how much do you invest if you don't mind?
मैं हर नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डिपेंड वो करता हूँ, डिसाइड कि मैं कहाँ इन्वेस्ट और कैसे करूंगा.
okay.
हर बार चेंज होता है, मनी फ्लो हर बार चेंज
डिफरेंट होता है.
मार्केट भी डिफरेंट नहीं रहती, स्टॉक्स भी एक ही नहीं रहते, तो पैसा कैसे एक रहेगा भाई, है ना. तो बेसिकली क्या रहता है, कभी कभी वो 50-50 हो जाता है, कभी कभी वो 100 ही मेरे पास होता है, मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करता, आई जस्ट होल्ड इट, नहीं करना. कभी एंड आई ऑलवेज लाइक एज आई सेड, यू हैव टू बी स्मार्ट व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट. I smart with the thing that कि अगर मैं कोई चीज खरीदू ना मुझे इफेक्ट ना करनी है, करे. मैं अगर 100 कमा रहा तो 50 की चीज नहीं खरीदूंगा. मैं पहले ये देखूंगा डेप्रिसिएशन एसेट क्या है.
वाओ.
ठीक है. अगर मुझे लगता है कि ये गाड़ी है जो 80 लाख की है, ये गाड़ी मुझे 30 लाख में मिल सकती है, मैं बेवकूफ का बट्ठा बैठा हूं क्या यहाँ पर? मैं लोगों को दिखाने के लिए ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदूंगा जिसकी कमी कीमत ही नीचे गिरनी है. क्यों लूंगा? अब सोसाइटी क्या होती है, आप कहाँ बज, आपकी कहाँ लंका लगती है भाई? यार बंदे बोलेंगे बंदे ने सेकेंड हैंड ले ली यार, भाई फर्स्ट हैंड भाई करना है तो भाई पूरा करना है, तोप चलाएंगे भाई, बड़ी गाड़ी भाई फर्स्ट हैंड निकलवाई है. मैंने आपको बता दी फर्स्ट हैंड, मैंने अपने साथ वालों को बता दी फर्स्ट हैंड. 2 महीने बाद उसकी थूथ बिल्कुल सेकेंड हैंड ही रहेगी, उसकी शक्ल सेकेंड हैंड हो जाएगी. फिर मैं लोगों को, अच्छा अब मैं लोगों को बोलूंगा भाई फर्स्ट हैंड ली थी, हु गिव्स अ फक.
Yeah.
Who gives a fucking fuck, भाई क्या फर्क पड़ता है लोगों को आपने फर्स्ट हैंड लिया सेकंड हैंड? 1 महीने के अंदर सबको पता चल जाएगा आपके पास है चीज. नाउ इट्स ओवर, हाइप कल्चर इज गॉन. नाउ व्हाट? 80 लाख रुपए आप बर्बाद कर चुके उस चीज पर
जो 50 में आ सकती थी,
जो चीज 30 में आ सकती थी आप उस पर 80 वेस्ट कर चुके हो. तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है. तो जब मैं कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता हूं ना, मैं कोई चीज लेनी होती, मैं पहले ये देखता हूँ डेप्रिसिएशन एसेट है कि नहीं है, या क्या. अगर मुझे लगता है कि ये चीज बढ़ सकती है, अगर लगता है कि घटनी है मगर मुझे चाहिए, मैं ले लूंगा, मैं बेस्ट डील उठाऊंगा.
घर ले लिया? अभी नहीं, अभी लेना है.
घर ले लिए?
नाइस.
घर ले लिए हैं?
ले. इंटरेस्टिंग.
तो वो तभी हो पाया जब मैंने ये चीज जानी कि मैं किसी ऐसी चीज पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसकी वैल्यू गिरनी है मार्केट में जाके.
मैं ऐसी जगह, तो ऐसे हैव यू इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स या
मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी अभी इस टाइम पे जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे को दो साल बाद कि भाई दो साल बाद इसका ये मिल जाएगा. आई डोंट वॉन्ट क्विक रिटर्न. मेरा हाँ, जब मेरी कला ही बहुत लिमिटेड टाइम तक रहने वाली है, मैं आई नो दिस थिंग, स्पोर्ट्स पर्सन की भी रहने वाली है, तो मैं ऐसे क्विक डिसीजंस क्यों लूं? मैं उस चीज को छोड़ दूंगा लेकर. मैं 26 का हूं, मैं 36 तक रुकूंगा. और मैं ऐसी 10 जगहों पे चीजें लूंगा जो 36 के बाद 10 साल बाद देखेंगे, और उन जगहों पे लूंगा जो थोड़ी सी डेवलपमेंट से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे हूं, जहां पर मुझे पता है 10 साल के अंदर वो एक्वायर हो जाएंगी चीजें और ज्यादा रिटर्न मिलेगा. 36 का होने के बाद जो आज मैं 2 का 4 बना के उठूंगा, 2 साल बाद मैं 36 का होने के बाद पता नहीं क्या उठा बना के निकलूंगा. मैं उठाऊंगा भी नहीं भाई, पड़े रहो. क्योंकि मेरा ऑलरेडी कहीं से पैसिव इनकम होगा जहां मुझे पता भी नहीं होगा मैं क्या क्या करके बैठा हूं.
दैट्स द गोल.
फाइनेंशियल फ्री हो जाओ, मतलब फाइनेंस फ्री हो जाओ लाइफ में, वो गोल है. मैं तब भी बैठ के गिनना नहीं चाहता कि यार इतने बचे इतने नहीं. आपको कैसे इन्वेस्ट करना है कैसे नहीं, वो सोचने वाली चीज होती है. अच्छा, दूसरी चीज, कई बार आपके साथ के लोग ऐसे नहीं होते जो आपको डिसीजन बनाने दें. कहीं आपके साथ हर बार ब्रेनीज नहीं बैठे होते बंदे के, नहीं भाई आप ये मत करो. कई बार आपके साथ वाले ही पंप होते हैं. ऐसे बहुत आर्टिस्टों को जानता हूँ जिन्होंने अपने साथ वालों को, पाजी यार फर्स्ट हैंड ले लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होता, उठा लो 10 की चीज 100 में उठा लो, हवा बना दो, हवा हो जाएगी. 134 करोड़ लोग हैं, कितनी हवा बना लोगे. हवा मत बनाओ भाई, बेस बनाओ. कई आर्टिस्ट ने उड़ाया पैसा इस चक्कर में क्योंकि साइड साथ वालों ने पंप करा.
भाई ये लाइन बोली ना, हिट कर गई मुझे. हवा मत बनाओ भाई, बेस बना लो.
दिस इज बहुत लोगों ने, मतलब बहुत हैं आर्टिस्ट. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस चीज से लेके. दूसरी चीज, मैं अपने कोर पे भी इतना सॉलिड हूँ कि मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि ये चीज क्या होगी और इससे कैसा होगा, क्या रिटर्न होंगे इसके. और मैं इसको ईगो नहीं लाता, मैं क्यों पूछूं. नहीं भाई, मेरे को कई बार हो सकता है कोई 15 साल का बच्चा जो स्टॉक्स में खेल रहा है वो मेरे को बता जाए कि भाई आप ये कर दो और इससे आप ऐसी तैसी कर दोगे. मैं उससे सीख लूंगा, मेरे पास पड़ी है, मुझे पता है, मुझे बस जानना है. आई जस्ट वॉन्ट द नॉलेज, द राइट नॉलेज. दैट्स द होल थिंग. मेरी लाइफ, मेरी आर्टिस्ट्री सब इसी चीज पे, राइट नॉलेज क्या है.
वेरी इंटरेस्टिंग.
Right, मेरे को अपनी रॉयल्टीज भी आएंगे एक टाइम बाद, मेरे को रॉयल्टीज की भी लोड नहीं है, मेरे पास इतनी एसेट्स होंगे चीजों के. डेप्रिसिएशन वाले अलग होंगे जो मैं शॉक करके खत्म कर दूंगा, है ना, वो वाले होंगे.
एप्रिशिएट अलग होंगे, डेप्रिशिएट अलग होंगे.
एग्जैक्टली.
अच्छा एक बात, अब लाइक हैव यू थॉट ऑफ नाउ दैट यू हैव अ रीच, अब यू नो कि ए मेरे पास रीच है, इतने लाखों लोग आपको सुनते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, उसके बाद नाउ यू नो कि यार लोग मुझसे कनेक्ट भी करते हैं, तो क्या मैं इसको बिकॉज इतने लोग साथ में, तो कभी बिजनेस चलाने का सोचा, बिजनेस स्टार्ट करने का, कि यार मैं हो सकता है मेरे नाम का क्लब खोल लूं, या हो सकता है मेरे नाम का रेस्टोरेंट खोल
लूं. यही है बिजनेस, यही चीज सीखने वाली है. ये इन सब चीजों पर मैं काम कर रहा हूँ. इन सब चीजों में मैं काम कर रहा हूँ. मैं मर्च नहीं निकालूंगा अपने. मेरे पास सारे प्लान है कि मुझे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप. मेरा ब्रांड, मैं खुद का एक ब्रांड लॉन्च करूंगा जिसमें ना बड़ा बड़ा अच्छा बहुत माइंड फक चीज बताऊंगा. मैंने अपना नाम किंग क्यू भी रखा. अगर आप कहीं किंग लिख भी दोगे ना, तो जब आप उसे देखोगे और जो उसे पहनेगा, तो शायद मेरी शक्ल नहीं आएगी, बट किंग वो एक स्टेटमेंट है. किंग इज अ स्टेटमेंट, समझ रहे हो. कई बार होता है ना कि अपने नाम से आप एक अपनी निकाल देते हो ब्रांड, और आप सोचते हो लोग इसे पहनेंगे. बट लोग जब आपका नाम लिखा है उस पर, लोग वो अपने आप को फील कर ही नहीं सकते.
बट नाम तो उसका लिखा है,
किंग सब फील करेंगे. दैट्स व्हाई मेरा इंस्टाग्राम का नाम भी आई फील किंग है. तो मतलब मेरा कुछ भी नहीं है अपना, इट्स ऑल जस्ट वाइब, यू नो.
नाइस.
जो लोग फील कर सकें, आर्टिस्ट्री भी वही है. तो अभी 2-3 साल में हो सकता है मैं अपना अब एक ब्रांड खोलूं. नाम मैंने आज से 5 साल पहले सोच लिया था ब्रांड का, क्या हुआ, उसका नाम किंग तो बिल्कुल नहीं होने वाला. और वो ब्रांड स्लिम टू फैट फीमेल्स, बॉयज, ऑल साइजेस, सबके लिए ऐसा फिट होगा, वो ऐसी चीज होगी, वो ऐसी लाइन होगी क्लोदिंग की जो हर बंदा पहन के कॉन्फिडेंट फील करेगा और उसको लगेगा कि हाँ कोई चीज है. बिजनेस उससे बाद में करूंगा मैं, पहले मैं वो फील, वो टेक्सचर, वो चीज देना चाहता
हूँ. इमोशन ट्रांसफर करूँगा
मैं, पहले वो इमोशन ट्रांसफर करना चाहता हूँ, वो राइट चीज लेकर आना चाहता हूँ कि वो पहने लोग और उसका डिजाइन और वो फिट ऐसा हो कि लोग फील करें यार दिस इज माई शर्ट, दिस इज मी, दिस इज नॉट किंग, दिस इज मी एंड आई एम किंग समवेयर. वो एक फील करे, वो एक फील, वो एक कॉन्फिडेंस.
आई फील किंग.
हाँ वो मेरा है, बाकी और भी बहुत सारे प्लान है.
सी ऑन फिगरिंग आउट वी गेट अपॉर्चुनिटीज, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज. वी हैव वन ऑफ द बिगेस्ट पॉप स्टार्स और स्टार्स और म्यूजिक आइकॉन ऑफ इंडिया हु wants to launch one day an emotion which he can transfer from his heart to other people. If you are someone jiske paas is dream ko ya is plan ko reality mein execute karne ka kuch tarika ya way hai, feel free to reach out to him and tell him ki isko reality kaise badli ja sakti. Ho sakta hai wo 3 saal baad nahi 3 mahine baad start.
Exactly, just give me the right knowledge matlab.
Yeah.
This is
one of the biggest opportunities to work with with someone like you.
I have like so many ideas bhai. Me and my management, we are like, we discuss over like, so everybody knows, jo bhi mere ko janta hai usse pata hai main like I'm a big foodie person. Everybody knows that I so crave for like chole bhature, bahut pasand hai mujhe.
Mujhe chole kulche bahut pasand hai, matar kulche
game bhai, chole kulche chole bhature dono bhai bhai, ye dono pasand hai mujhe. To matlab hum yahan tak bhi sochte hain ki kaise apne brand khol lega chole bhature ka
bhai.
Ha bhai, mere liye na koi dhanda bada aur chota nahi.
Ha
max status leke baitha uska matlab ye nahi ki main badi cheez karunga. भाई पार्ले जी आज ही 5 रुपए का क्यों बिकता है, कितने बिस्किटों के रेट बढ़े और कितने बिस्किट खत्म हो गए, आज ही पार्ले जी 5 रुपए का ही है और वो अकेला ऐसा बिस्किट है जो 134 करोड़ लोग, जो बच्चे हैं ना जिनको अभी समझ ही नहीं है, जो इतने छोटे हैं बेचारे, उनको छोड़ के जिस भी इंसान को समझ का जिस दिन बल्ब जल जाता है ना, 134 करोड़ लोग वो सब जानते हैं पार्ले जी क्या है. छोटा बिजनेस, छोटे 5 रुपए का मिलता है सिर्फ, सबको पता है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते होंगे ना उससे, वो ही जानते हैं.
पूरा कंपनी बन गया उसके
बेस पे. तो मेरे लिए ये भी बिजनेस है, मेरे लिए ये भी बिजनेस है.
बिजनेस
राइट नॉलेज किस चीज की है. लोग अच्छा, बहुत से आर्टिस्ट लोगों को नहीं बोलते हैं भाई मैं पैसे के लिए नहीं करता, मैं फील करता हूं मैं इसलिए करता हूं. मैं कहता हूं मैं उस बंदे के आगे एक खोखा रख देता हूं, क्या वो नहीं लेगा अपनी आर्ट के लिए?
सब लेंगे.
तो ये बिजनेस नहीं हुआ. अब कैसे इमोशन तुम्हारे यूं हो गए? बेसिकली ये लोग जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रीचिंग आउट टू दैट लेवल, उन चीजों को स्टडी नहीं कर पा रहे कि उन मासेस में जाएं, ये लोग वही जो उसके जस्टिन के प्रोड्यूसर ने बात बोली वो बहुत सही बात है भाई. आप नहीं कर पा रहे तो आप बोलोगे ये चीज है, मैं इसके लिए नहीं करता भाई, चाहे इतने लोग सुने मैं उनके लिए करता हूं. भाई कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं, या तो वो इतना फाइनेंशियली फ्री होने वाला लाइफ में
कि वो इतना पैसा तो फर्क नहीं पड़ता.
कान्ये वेस्ट
अब फर्क नहीं पड़ता,
उसने ऐसी तैसी कर दी भाई दुनिया की बैंकरप्सी. 30 मिलियन डेप्थ में बंदा आज 6 बिलियन की नेटवर्थ लेके बैठा है विद इन द स्पैम ऑफ 3 ईयर्स ओनली. 3 से 4 साल के अंदर जो बंदा 30 मिलियन डेप्थ में, वो बंदा 6 बिलियन के प्रॉफिट में आ जाए,
गेम चेंज कर दिया.
लोग उसे बेवकूफ बोलते थे, उसने कर दिया. एंड नाउ ही डजंट गिव अ फक. भाई एक बताओ ना, एक ऐसी एल्बम जिसका कवर आर्ट ही ब्लैक हो, नो नेम नथिंग, it's just Kanye West album, that's it.
Yeah.
Album शुरू होने से पहले उसने अपना एक वो बनाया, that's a MIDI or something, एक gadget बनाया था जिसमें वो पूरी Donda album चलती थी. Album शुरू होने से पहले, album launch होने से पहले, album के जितने भी उसने tours करे हैं, वो 16 million का revenue generate करके गया उस चीज से, album release होने से पहले. Imagine, 16 million album release होने से पहले कमा लिया उस बंदे ने.
Wild.
अब क्या उसे बाहर बोल देंगे भाई ये पैसे के लिए करता है, रियल थोड़ी है तू, तो पैसे के लिए करता है इसलिए तो अपने बिना, अब उसके लिए करना, इमोशन के लिए करना. अब वो कर तो रहा है.
नाइस.
ये समझने की बहुत जरूरत है. और भाई सही बताऊं, मेरा ऐसा मानना है बहुत से ऐसे लोग हैं पता है जिन्होंने शायद ये चीज देखी भी नहीं. बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो गलत बोलते हैं बट उन्होंने नहीं देखी. भाई मैं वहां से आता हूं जिसके पास कुछ ही नहीं था. अगेन आई एम सेइंग दिस, मैं घुसा, मैंने देखा, मुझे पता है कि घर वालों की क्या जरूरतें होती है. आई एम 26 नाउ, ठीक है. बहुत सारे यहाँ पर रैपर्स हैं जो 22 और 23 साल के हैं, बोलते हैं हम तो भाई अपने लिए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. द पॉइंट इज, और बहुत सारे ऐसे रैपर भी हैं जिनको मैं, जिनसे मेरी बात होती है, वो मेरे को बोल रहे हैं भाई वी आर गेटिंग अ जॉब, वी आर लीविंग दिस, वो हो गए उनकी एज भाई 26, 27, 28 हिट करते ही ना आपको पता चलता है कि आपके घर वाले आपको आदमी घोषित कर चुके हैं, आप लौंडे नहीं हो. एक आदमी से एक सोसाइटी भी ना कुछ एक्सपेक्ट करे, घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं दैट यू हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर नो मैटर व्हाट तुम्हारे घर में कितने कमाने वाले
हैं.
यू हैव टू गेट योर ओन आइडेंटिटी, यू हैव टू हैव इट, के भाई होनी चाहिए वो चीज. ये चीज है अभी नेक्स्ट 5 ईयर में ना, ये चीज बहुत होने वाली है. मैं भी अपने एक दो दोस्त से बात कर रहा था इस बारे में, दैट राइट नाउ जितने भी मैं अब जिन बंदों से मैं बात कर पा रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक नहीं जाना चाहूंगा कि मेरी बातों के बड़े अजीब तूल बनता है, लोग कभी मुद्दा नहीं समझते और शायद 5 साल बाद समझेंगे। इस टाइम पे ना ग्रेट डिप्रेशन टाइम चल रहा है फॉर आर्टिस्ट,
फॉर एवरीवन,
ग्रेट डिप्रेशन टाइम। रीजन बी दिस, जो जस्टिन बीबर के प्रोड्यूसर ने बात बोली, यहां पर हाइप कल्चर के अंदर वो चीज कूल इतनी हो गई है ना, क्या वो ईगो बन चुकी है। योर स्टेटमेंट इज योर ईगो एंड योर ईगो इज योर स्टेटमेंट नाउ। दैट्स द मोस्ट फक्ड अप थिंग दैट वुड एवर हैपन टू एनी आर्टिस्ट। बहुत लोगों के साथ ही है और वो सब अभी 22, 23, 24, 4 साल और रुक जाओ। अगर वो नहीं ब्रेक थ्रू कर पाए ना, ये चीज वो नहीं ब्रेक थ्रू कर पाए, उनके सिर्फ गाने रह जाएंगे यूट्यूब पर, वो छोड़ देंगे वो चीजें, क्योंकि वो उतना जितनी उनकी फैमिली को फीड करे वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाएगा। मैं बस यही है कि उस चीज को समझो, दिस इज रियल शिट, दिस इज रियल लाइफ। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ रियल रियल रैपर और फेक रैपर, इट्स अबाउट बीइंग अ रियल पर्सन इन लाइफ। अपनी आर्ट, वो जो सपने आप सपने लिखते हो, उन सपनों से कुछ सच में आप निकाल के लेकर आ रहे हो जिससे सच में लोगों के पेट भर रहे हैं। आप इस चीज को समझो, दैट्स अ रियल डील, दैट्स अ रियल बिजनेस, दैट्स अ रियल लाइफ। इफ यू आर मेकिंग इनफ मनी एंड यू से दिस, भाई पैसा हर चीज नहीं होती, आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। बट इफ यू आर नॉट, इफ यू आर मेकिंग शिट, यू आर मेकिंग नथिंग एंड यू आर सेइंग भाई पैसा हर चीज नहीं होती, ब्रो आई डोंट इवन काउंट यू।
ब्रो वॉश योर फेस।
हाँ, वो ये ना एक बड़ा सही कोट था कि एक बंदे ने एक बड़े डिफरेंट कलर की बुगाटी ले रखी थी। मैंने पढ़ रहा था कि बड़ी डिफरेंट कलर की बुगाटी थी, तो उसने एक बंदे ने बोला, आपने ये कलर क्यों लिया बुगाटी का, ये अच्छा नहीं है, मतलब इट्स नॉट गुड, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो वो उससे बोलता है, अच्छा तो व्हाट कलर इज योर बुगाटी। बूम,
माइक ड्रॉप,
माइक ड्रॉप।
नाइस, नाइस।
अब उसने वो डिफरेंट कलर लिया ही इसलिए क्योंकि भाई उस पर बुकाटी वो ले सकता है, उस पर है 16 मिलियन, उसने खरीद लिया 8-16 मिलियन की गाड़ी। अब वो कुछ भी कलर चाहे उस पर करा सकता है, उसको पता है वो बुकाटी पे करा रहा है
उसका।
आप उसको आके बोलोगे, ये क्या ले लिया ये कलर यार, क्या ले लिया, तोता लग रही है गाड़ी तुम्हारी, कौन से कलर की, फिर ये बताओ तुम्हारी बुकाटी कौन से कलर की है,
देखें चलो आओ,
देखें चलो आओ। बंदे का मुंह बंद, ये रियल लाइफ है। आपको आपको कोई भी नहीं रियलिटी चेक देगा ना, तो एक टाइम बाद आपको आपके घर वाले चेक दे देंगे रियलिटी। भाई आप जो लिख रहे थे ना तराने, वो नहीं बना के दे रहे पैसे। कब तक खेलोगे, बहुत हो गया खेल, छोड़ दो और रियल डील लाइफ स्टार्ट करो। जरूरत है, यहाँ पर घर में बहुत सारी चीजें आनी है।
जो मेरे डैड एक चीज बोलते हैं जो पैसे वाली बात पे, कि पैसे से खुशी नहीं आती, बट पैसे हर वो चीज में जरूरी है जिससे खुशी आती है।
बिल्कुल, बहुत तगड़ी बात है भाई। मैंने आज ये बात ले ली है, मैं इस बात को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हर चीज से कनेक्ट कर रहा हूँ। इफ यू लव समवन, पैसे से आप वो चीजें ले सकते हो जो उस माहौल को खुश कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके उसको गोल्ड की रिंग दे दोगे, हीरे की दे दो, नहीं, मगर आप एक माहौल बना सकते हो जहां आप देखने चाहते हो अपने लव्ड वन को बैठा हुआ, वो पैसे से आएगा।
लाइक हाउ डू यू एंजॉय इन लाइफ, फैमिली, लव, तुम्हारा प्रोफेशन, वर्क, आर्ट जो होता है, एंड जो चीज तुम खुद की हॉबी के लिए करते हो, राइट? यही चीज होती है कि ट्रैवल करना है, तो तुम्हें हॉबी जो ट्रैवल करना है, स्पोर्ट खेलना, उसके लिए पैसा चाहिए। लव
जो आजकल दूसरों के पैसों में वंडरलस्ट बने पड़े होते हैं बहुत वैसे देख लो इनकी आइडिया, ओ माय गॉड वंडरलस्ट यहाँ यहाँ घूम रहे, मगर इनके खुद के ही पैसे नहीं है बहुत जगहों पे, तो किसी और के पैसों
इधर उधर इधर उधर।
ब्रेकअप हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखा जाए,
घूमेंगे देखेंगे।
बहुत है यार,
दैट्स,
बट बहुत अच्छी बात बोली आपके डैड ने, मतलब
ही टेल्स मी अ लॉट बिकॉज़ ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी दैट यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम इज बीइंग पुअर। Like if you're born poor, it's a crime which you didn't commit.
Yeah.
So like it's your responsibility. Because what used to happen, you know, जो रोड पे लोग आते थे ना, तो रोड पे कांच से बजाते थे, हम लोग कार में बैठते थे, पैसे मांगते थे। तो मैं बोलता था कि पापा यार ये नाटक कर रहे हैं, राइट? तो पापा बोलते हैं यार तुझे नहीं पता कि वो नाटक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अपन सबको देते हैं, 10 में से 9 नाटक कर रहे हैं, 1 नहीं कर रहा है।
भाई मैं तो बिल्कुल
तो चले गया, तो एक को तो चले गया। सो इट्स लाइक कि पापा बोलते कि वो मांग भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने कुछ एक ऐसा क्राइम कर दिया है जो उनकी मर्जी से भी नहीं हुआ, किसी और ने, सिचुएशन ने उनके लिए कहा। सो कीप हेल्पिंग बिकॉज़ इफ यू डोंट, बिकॉज़ यू डोंट नो बीइंग व्हाट इज बीइंग पुअर।
या एग्जैक्टली,
मैं पता नहीं क्यों
ब्रो, यू नो व्हाट, मेरे को इतना अच्छा लगा। सो दैट्स व्हाट माय फाइट इज, क्योंकि मैं जहां से आता हूं, मेरी जो जिंदगी है, मैं शायद कभी लोगों के आगे लाउड एंड मैं रखूंगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि मेरी तरक्की या मुझे जो बनना है ना, वो हर वो चीज मिटा देगी। सिर्फ मेरे को पता होगी मैं कहां से आता हूं, मैंने क्या देखा है, बट मेरी भी लड़ाई यही है भाई, आई वांट टू बी दैट पर्सन इन माय लाइफ, इन माय फैमिली, जिसने वो क्राइसिस हटा दिए
फॉर एंटायर फैमिली.
हाँ, फॉर एंटायर फैमिली जनरेशंस. मैं क्यों ना, मेरी लड़ाई बड़ी है भाई, मेरे को क्यों ये छोटी छोटी, मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से. आप नहीं सोचते होगे शायद, मैं सोचता हूँ, मैं लेजिट सोचता हूँ. कई लोग सिर्फ साउंड करते हैं, है ना, बट भाई मैं उस चीज पे काम करता हूँ, लाइक माय टीम एवरीबॉडी नोज. और मुझे चीज को तो प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है. मेरे घर वाले चांसेस हो रहे हैं, उन्हें पता है लड़के ने बॉम्बे में घर रह रखा, चिल मार रहा है, अपना बैठा हुआ है, काम से गया हुआ है. ये मैंने खुद करा है, ठीक है. तो वो एक बहुत, ये मेरी लड़ाई खुद से है इस चीज की, कि मुझे पता है गरीबी क्या होती है, घर में राशन कैसा आता है. आई नो एवरीथिंग. मुझे कहां जॉनरों में डाल रहे हो तुम लोग. मैं भाई अपने घर से, मैं अपने माओ पोस का भरोसा ले, मैं कमाने निकला हूं बाहर. नाम और पैसा, इज्जत, सब कमाने निकला हूं. कहां भटका रहे हो मुझे यार, मैं कहां भटकूंगा इन चीजों से. आप भटको यार, आपके घर में शायद आपने ये चीजें नहीं देखी होंगी. और अगर आप बोलो कि नहीं भाई, वी आर द रियल वंस, हमने देखी है, तो बहुत जल्दी काम करना उस पर.
मुझे मत डालो इन सब
भाई बातें. मैं बता रहा हूं ना, चोट अगर बदन पे लगी हो ना, वो मरहम दवाई से ही ठीक होता है, बातें चोदने से ठीक नहीं होता. पट्टी लगती है, पैसा लगता है.
बात तो सही है.
रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी बहुत तगड़ी. मैं एक हाउस पार्टी में था, शो खत्म हो गया था, उसके बाद मिला था मैं वॉर में खड़े हुए छत पे. उन्होंने मेरे को एक बहुत तगड़ी बात बोली. वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं तो बड़े प्यार से ना बाबू बोलते हैं, कहते बाबू एक बात बता. कह रहा देख मैं रैपर हूं, कह रहा कल को मेरी माँ को कुछ हो जाता है. भाई मैं उस दिन ना कसम से मैं बता रहा हूं, मैं बहुत बड़ी चीज सीखा, हमेशा से सुनी है बट समझ आना जब मैं जाकर, कि मैं उस इंसान को जिसको मैं आइडल, वो बंदा मेरे सामने बात बता रहा है. कह रहा मैं रैपर हूं, कह रहा तेरे को पता कल को मेरी माँ बीमार हो जाती है. कह रहा मैं हॉस्पिटल लेके भगता हूँ. कह रहा मैं वहां जाके ये बोलूंगा मेरा रैप सुन लो और मेरी माँ को ठीक कर दो. कह रहा उसके लिए पैसा लगता है. कह रहे तेरे को पता है बहुत से लोग ये चीज नहीं गलत, कह रहे बहुत से लोग मुझे गलत ठहराएंगे कि क्या पैसे की बात करता है. भाई मेरी माँ बच रही है उस चीज से, वो जरूरी है. वो मैंने माना वो सब कुछ नहीं है, मेरी माँ के आगे तो कुछ भी नहीं है वो, मगर मेरी माँ के सराउंडिंग की चीजें वो चीज ठीक करके दे रही है, तो मुझे वो चाहिए. कह रहे किंग हमेशा वो बंदा दिमाग में हमेशा रखियो कि क्या जरूरी है. कह रहे यहां बहुत से आर्टिस्ट ये चीज नहीं कर रहे. और ये तब की बात है, ये छोड़ो कब की टाइमलाइन की बात है, बट ही इज ऑलवेज द सेम, कि वो हमेशा ही ऑलवेज टेल यू कि क्या जरूरी है. मेरे को तो बताया भाई कि जरूरी क्या है, कितना जरूरी है और कितना जरूरी नहीं है. जब अपने बैठे ना टेबल पे और तुम बैठे हो, तो किसी और का बिल देने के हाथ उठना नहीं चाहिए. उड़ाना फिर उसका डर है कि अपने बैठे हैं तो, और कमाना फिर उसका डर है कि भाई अगर अपनों में से किसी की भी दिक्कत हो गई ना, तो तुम बैठो तब भी कोई बिल पे हाथ नहीं उठाएगा.
I tell you, yesterday, okay, I was with my mom. Same cheese was it. So, mom was, I took her to a very, very expensive mall. Where like, every brand was like very expensive, right? And mom was like, yaar, idhar chalein, idhar dekhein, ye karein. Kitne ka hoga, kya kitne ka loo. Mom, aapko jo pasand aara, bolo. Price mat dekho, theek hai? To mummy bolti ki, aray, pata nahi kitne ka ho, kya ho. Mala, mummy, जिस दुकान मेरे को पता है ना कि इस दुकान में प्राइस टैग देखना पड़ेगा, मैं वहीं से मना कर दूं. उस दुकान में जाएंगे ही नहीं. हम जाएंगे ऐसी दुकान में जहां आपको प्राइस टैग देखना नहीं पड़ेगा. सो आई एम स्मार्ट अबाउट इट.
इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली आल्सो स्ट्रॉन्ग.
एग्जैक्टली. मुझे पता है कि इस दुकान में मुझे पता है कि 10 बार मुझे भी देखना पड़ेगा कि भाई ऐसे तो नहीं उठा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता दैट माई मॉम चूजेस समथिंग और फिर मैं रिजेक्ट करूं. Exactly. तो जाते ही ऐसी जगह हो जहां पे मुझे पता है कि आप एक नहीं चार चीजें लोगे तो भी मुझे प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा. सो दैट्स द सेम थिंग विद.
बहुत अच्छी चीज है भाई, ये बहुत अच्छी चीज है. मतलब मैं तो मानता हूँ हर इंसान को ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि पहले खुद पे इतना काम कर लो कि जब अपने माँ बाप को ले आके खड़ा करो ना, तो उन्हें सच में ये ना होना पड़े. मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत बेसिक है, मतलब आप उनको देख के नहीं बोल सकते. मतलब वो कई बार खुद बोल देते, कहते हमें देख कोई बोलेगा मैं किंग की मम्मी हूँ, किंग के पापा हैं. वो that much
See, basic.
उनके पास अगर उनको मैं बोलता हूँ कि घुमाओ, तो उनको उज्जैन जाना है, वो शिव भक्त है, तो वो नहीं यहाँ जाना है वहां. उनका ये है, उनके पास सिर्फ दुआएं हैं. आज भी उनके पास सिर्फ दुआएं हैं. और लिटरली मेरी माँ आज भी, मैं अगर गड्डी भी रख देता हूँ ना अपनी माँ के हाथों में, और वो उनके हाथों में भी नहीं आती, वो ऐसे लेके रखती है यूं, तो वो तब भी मेरे से पूछे तेरे पास बचे हैं पैसे. मतलब वो है, वो चीज मैं कभी नहीं खरीद सकता जिंदगी में, वो प्योरिटी मैं कभी नहीं खरीद सकता, मगर मैं लुटा सकता हूँ.
योर इनसाइड म्यूजिक इंडस्ट्री यार, और तूने ना स्टार्टिंग से बहुत चीजें क्लोजली देखी है, क्योंकि यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव डन रियलिटी शो, यू हैव वर्क विद पीपल लाइक रफ्तार, और अब नाउ यू आर क्रैकिंग बिगर डील्स, यू आर वर्किंग विद पीपल लाइक वार्नर ब्रोस, राइट?
या वार्नर म्यूजिक, वार्नर ब्रोस,
तो यू आर वर्किंग विद देम एज वेल, सो यू हैव सीन एवरीथिंग. If someone is watching this right now, और उसका म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, राइट? वो किसी रीजन से म्यूजिशियन नहीं बन पाया, या उसे बनना नहीं है, जो भी उसे म्यूजिक में पास में रहना है, काम करना है, सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट डू यू फील एज एन आर्टिस्ट, की व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, जो बाहर वाला बंदा कोई सोचे और ये सॉल्व कर दे तो तुझे लगता है यार इस पे धंधा बहुत बड़ा बना सकता है?
पहली चीज
बहुत प्रॉब्लम.
हाँ, पहली चीज तो क्या है ना, मेरे पास ये मैसेजेस भी आते हैं, बड़े बड़े शेडी और बड़े लेम मैसेज लगते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं सर, मगर हमारे पास पैसा नहीं है. वो बंदा इस बात का क्या ही जवाब देगा जिसके पास खुद नहीं था और उसने कर दिया? मेरे लिए वो क्वेश्चन ही खारिज है, सिरे से खारिज करता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को. ऐसा सवाल तो पहली बात मैं रखूंगा ही नहीं, कि जो बंदा इस टाइम में जो भी बताने जा रहा हूं वो इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे नहीं है, ठीक है? अगर आप एक किंगफिशर की बियर खरीद सकते हो वीकेंड में बैठ के दोस्तों के साथ पीने के लिए, तो भाई आप खाना बना सकते हो 3 हफ्ते की रोक कर, रिकॉर्ड कर सकते हो, आज भी चीजें हैं, ठीक है? पॉइंट बीइंग, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं है. मैं हर उस चीज़ का शायद जवाब खुद हूँ तुम्हारे आगे, कि मेरे पास भी कोई सिखाने वाला नहीं था. पॉइंट बीइंग, तुम्हारी क्यूरियोसिटी कितनी है? मेरे को अगर यहाँ तक कोई भी चीज़ लेकर आई है ना, वो मेरी क्यूरियोसिटी लेकर आई है, मेरे को जानना है, आई वॉन्ट द राइट नॉलेज, चीज़ें काम कैसे करती है, ठीक है? वो आपको अपने आप जिंदगी में, आप जो भी पाथ चाहते हो ना, चाहे म्यूजिक हो कुछ भी हो, अपने आप उसके फाइंड आउट. क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी चीज है, कि यार अगर पैसा नहीं आ रहा, मैं किसी बिना चीज को हार्म करे कैसा ऐसा करूं कि मैं पैसा कमाऊं, या मैं आप कहीं से भी कमा रहे हो तो मैं उसको कितना लगाऊं. बात आज 10 लाख और 10 करोड़ की नहीं है, बात जब मैं 10,000 कमाता था, मैं उसमें से भी कितना लगाना ये नहीं लगाना वो दिमाग में रखता था, वो रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तीसरी चीज ये आती है, हाँ, म्यूजिक प्रोडक्शन, क्यूरियोसिटी. भाई म्यूजिक इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी. ये आपको कोई से, आप सो दो तरह के एग्जैक्टली गलती आप में, गलती चीजों में नहीं है. यूट्यूब इज फ्री, कितने प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, कितने गाने आप सुन सकते हो, कितनी चीजें आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, बट आपको नहीं करना, आपको सिर्फ एक रीजन चाहिए. बहुत सारे इस टाइम मेरे फेलो आर्टिस्ट भी हैं जो मेरे को बहुत ऐसे सिली रीजन देते हैं ना चीजें करने की, कि भाई यार ऐसा नहीं हो रहा इसलिए नहीं कर पा रहा. मैं बोलता हूँ यार क्यों कर रहे हो ये चीज़, मेरे आगे तो मत बोलो, मेरे को तो पता है चीज़ों के, ऐसा मत करो. तो म्यूजिक क्यूरियोसिटी, दो तरह के कलाकार होते हैं, मैं बताता हूँ. एक होते हैं जो किताब वाले कलाकार होते हैं, जो प्रॉपर पढ़ते हैं. भाई मेरी जिंदगी में मैं जिस कंडीशन से आता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं पढ़ सकूँ, और इतना पैसा नहीं था कि मैं लगा सकूँ. तो मैं आई बिकेम माई ओन टीचर चीज़ों को लेकर, और मैं बिलीव नहीं करता कि मैं जब 100% प्योर हो जाऊँगा तभी मैं उतरूंगा मार्केट में. नहीं, मैं गलतियों से सीखता हूँ, और मैं गलतियाँ करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं करता. क्या होगा, 4 लोग हंसेंगे, मगर जब उस जगह दोबारा मैं जाऊंगा ना, वो नहीं हंसेंगे, क्योंकि ये मेरा होमवर्क है. तीसरी चीज, होमवर्क बहुत जरूरी है. होमवर्क के अंदर आती है कन्वर्जेशंस. आप कितनी कन्वर्जेशन आपके साथ वो लोग हैं जो, अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप उन लोगों को अपने कैसे विजन बता सकते हो. कन्वर्जेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, मतलब मेरी बेटरमेंट के अंदर, मेरी नरिशमेंट के अंदर एज एन आर्टिस्ट, कन्वर्जेशन बहुत बड़ा हिस्सा करती है. इसलिए शायद मैं यहाँ पर आगे जवाब दे पा रहा हूँ चीज़ों के, क्योंकि जब ये चीजें कुछ भी नहीं थी ना, मैं इमेजिन करा करता था, मैं अपने दोस्त को बोला करता था, इमेजिन कर मैं एक पॉडकास्ट में बैठा हूँ बड़े, और सोच मैं वहां पर ये क्वेश्चन मेरे से कर देगा, मैं क्या जवाब दूंगा. भाई मैं वो करा करता था. मैं अब यहाँ पर अब चिल्ला चिल्ला के कपड़े नहीं फाड़ सकता, मगर आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मैं अपनी चीज से कितना प्यार करता हूँ. मैं उस मेंटल स्टेट से कितना प्यार करता हूँ, मैं उन जवाबों से कितना प्यार करता हूँ जो मेरे से कभी पूछे नहीं गए थे आज से 5 साल पहले. अपने गोल्स और अपने बिलीव जो है वो रखना सीखो, बोलना सीखो, वो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, वो बूस्ट देना बहुत जरूरी है. कुछ लोग आपको आएंगे कॉकी बोलने, कि होने से पहले क्यों बोल रहा है. अच्छा, जब तक आपको वो चीज का प्लान ना पता हो ना, मत बोलो. ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि कई लोग बहुत कुछ बोल देते हैं.
इंटरेस्टिंग लेसन.
कई लोग नंबर वन बोल देते हैं बट बन नहीं पाते.
नंबर वन पहुंचने तक प्लान हो तुम्हारे पास, तब बोलना स्टार्ट,
तब बोलो, और वो धीरे धीरे बनता है. ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप, ऑलवेज होल्ड योर फाइनेंसेस, ठीक है? डेप्रिसिएशन एसेट जो है, कोई शर्म वाली बात नहीं है. दुनिया में तुमने चलानी है, गाड़ी भी लेते हो, अगर तुमने चलानी है, कोई और लेगा, कोई और चला लेगा, तुम्हारे घर में ही कोई और चला लेगा, या बाहर कोई और चला लेगा. एक मशीनरी 15 साल बाद, 20 साल बाद खराब हो जाएगी, कबाड़े में पड़ी होगी, चंक इतना सा बॉक्स बन के, कोई नहीं याद रखने वाला, कोई फक नहीं देने वाला इन चीज़ों को. ये चीज़ जरूरी नहीं है. और दूसरी चीज ऑन द अदर साइड, तीन भागों में बांटो चीजों को. मैं तीन भागों में बांटता हूँ चीजों को, एक जो मैं अभी कर रहा हूँ, एक जो मैं इस साल के अंदर करूंगा, और एक जो आज से 10 साल बाद उखाड़ना है. तो आपके फाइनेंसेस तीन जगह बढ़ जाएंगे.
शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स.
ठीक है, मैं भी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पे हूँ, लॉन्ग टर्म पे मैं शुरू करने वाला हूँ चीजों को. अब वो मेरे लिए, मेरे तो सब कुछ क्यूरियोसिटी है. मैं देखूंगा कि 36 का जब मैं बैठूंगा और मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ तब देखते हैं ये चीजें होती है कि नहीं होती है ना.
बिल्कुल,
ये कितनी सही चीज है. मतलब मैं अभी बैठ रहा हूँ, आज से 10 साल बाद मैं 36 साल का बैठूंगा यहाँ पर, और तब हम देखेंगे बैठ के कॉपी पेन लेके क्या क्या उखाड़ा और क्या क्या नहीं उखाड़ा. और जो नहीं उखाड़ा नहीं उखाड़ा, कोई बात नहीं, जो उखाड़ लिया उखाड़ लिया. और तीसरी चीज भाई देखो, अगर आप बेवकूफी करते हो, 2-4 दिन बाद कोई याद नहीं रखने वाला. ठीक, अगर आपसे गलती हो भी जाती है भाई, इंटरनेट बहुत बड़ा है, आए दिन नई नई बेवकूफियों की आती रहती है चीजें. ठीक है, ड्रेक की एक बहुत तगड़ी चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ, उसका एक 72-74 hour rule, उसका रूल है. तो उसमें उसने, उसकी मॉम ने उसको सिखाया था कि मतलब इस दुनिया 72 घंटों के अंदर इतनी चीजें आती है ना, अगर आपको कोई पोक कर रहा है, कोई चीजें बोल रहा है, शांत रहो, 72 घंटे हो जाने दो उस चीज को. 72 से 74 घंटे होंगे, 3 दिन के अंदर इतने इतने मुद्दे आ चुके होंगे ना इंटरनेट पे कि आपकी चीजें छोटी हो जाएंगी, और तब आपको पता चलेगा यार उस चीज पे उतना रिएक्ट करता तो इतना बड़ा मुद्दा था, किसी और को बहुत चीजें मिल जाती करने के लिए. तो यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. और उस 72 घंटे में भाई आपको यह भी पता चल जाता है कि मेरे को क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है करना. और वो 72 के अंदर, क्योंकि भाई देखो बड़ी वैसी चीज होती है इमोशन ना, बड़ा वैसा है. मैं देखो यार इज्जतदार बंदा हूं अपनी जिंदगी के अंदर, छोटा उम्र में माना, मगर इज्जत लेके चलता हूं. कोई बंदा तूतड़ागा नहीं करता, प्यार है सबसे. मेरे को अगर कोई आके कोई चीज बोल दे तो मेरे को भी बुरा लगेगा उस चीज को लेके, बिना किसी जाने समझे बात की गहराई में पहुंचे अगर किसी चीज का, इसी बात का कोई बुरा लग जाए किसी को, कुछ भी हो सकता है. और एक और एक चीज बहुत गंदी दिक्कत है, पता है, मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, ये पॉडकास्ट जो मैं है ना, ये हो रहा है, जो रैप और ये हिप हॉप, इसको हटा के जो नॉर्मल लोग हैं ना भाई, वो एग्जैक्टली समझने वाले हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या बात कर रहे हो. जो ये वाले ने ये ढूंढेंगे कि मैंने किसके बारे में कौन सी बात बोली. ओ ये तो इसके बारे में बात कर, और को अभी कमेंट करता हूँ, अभी भाई को वाली क्लिप भेज देता हूँ, भाई ये देखो आपके बारे में बात बोल दी है. यहाँ बंदा क्या, बंदा जर्नी बता, यहाँ बंदा हम क्या बता रहे हैं और आप क्या
क्या लेके जा रहे हो.
एक लास्ट पॉडकास्ट में हुआ था मैंने, जिसमें यही बोला था कि यही लोग इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे जो इन्हें सुनते हैं ऐसे में, क्योंकि यही चीज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं लोगों को.
तो रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई अबाउट, आई ट्वीटेड समथिंग, मैंने एक ट्वीट किया
कि आप चल रहे हो तभी तो ये चीजें चल रही हैं.
तो मैंने एक ट्वीट किया कि अगर मेरे पास 25 घंटे होते दिन में तो भी मैं 26 घंटे काम करता. इट्स नॉट कि मेरे को कोई like I'm a workaholic. It's just I love work.
Exactly.
I love the grind because
exactly.
Yeah, I'm talking and I'm loving this. I get to know new stories. मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिल रहा है. 10 तरह के लोगों से चीजें मिल रहा है. I love it. Right. तो इसपे बहुत tweet हो गया, बवाल हो गया. It got featured in 35 newspapers that I'm promoting toxic work culture. And I'm like, भाई, it's like मैंने बोला मैं करता हूँ. मुझे पसंद आता है, दूसरों के लिए नहीं.
भाई मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ.
सो यू वर टॉकिंग टीम के साथ बैठे थे और टीम के साथ ये
बात आप देने जा रहे हो पब्लिकली एक अच्छी चीज कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं अपने काम से इतना प्यार करता हूँ. अगर आप कहीं कोने में अपने काम से इतना प्यार करते हो तो इतना ही प्यार होना चाहिए.
एग्जैक्टली, दैट वाज द फ्लो.
अब वो बोल देने से, अब वो बोल देने से आप सच में थोड़ी सरकार 25 घंटे या दुनिया 25 घंटे का बनाने लग जाएगी एक दिन, ये चीज हो थोड़ी सकती है. ये तो बस अफेक्शन और प्यार है बंदा जो कह रहा है अपने बारे में. ऐसा अगर वो पब्लिक है, पब्लिक फिगर है, वो बस बता रहा है कि यार ऐसा होता तो मैं काम से इस कदर मोहब्बत करता हूँ. भाई मैंने भी यही कोशिश करी थी अभी थोड़े दिन पहले, कोई चीज समझाने की, कोई चीज बताने की, और एज अ होल सम मैंने वो चीज बताई, बट देन उसमें से कुछ रविश लोग आए, उसने कुछ और पिक कर लिए, कहीं और किसी को बता दी, किसी का फ्रेजा ली, कुछ बात की कहाँ की कहाँ बन गई. मैं एक सुबह उठता हूँ, मैं देखता हूँ ये, और सबसे, और भाई सबसे बड़ी बात उसके अंदर ना 30 सेकंड का वो है जिसमें मैंने जो हुआ ना, मैंने वो प्रेडिक्ट उसी टाइम बैठ के करा था, उसी टाइम बैठ के प्रेडिक्ट करा था कि ये बात कोई उठाएगा, किसी को लगेगी मैंने स्पेसिफिक किसी के लिए बोली है, वो जाके उठा के उसको बोल देगा, उसको पता नहीं होगा पूरी कहानी के बारे में, वो पूरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट सुनने नहीं वाला, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, वो जाके मेरे बारे में कुछ बोल देगा और ये सब थंबनेल लगा के ये चीज चला देंगे और राइट नॉलेज कभी लोगों तक जा ही नहीं पाएगी. तो
इंटरनेट इज अ वाइल्ड प्लेस, यहाँ पे 100 तरह के लोग हैं, 100 तरह की चीजें करेंगे. पर आई लव दिस रूल. इसके ऊपर आई वांट टू से द लास्ट थिंग कि मेरा इस पे रूल ये है कि ना जब भी मेरे साथ कुछ ऐसी चीज होती है कि मान लो ये कंट्रोवर्सी हुई या बहुत ज्यादा वायरल हो गया, तो मैं उसको खुद को अफेक्ट नहीं करने देता कि मुझे अफेक्ट होने नहीं चाहिए। पर ऑन द कॉन्ट्ररी जब मेरी बहुत तारीफ होती ना, मैं वो भी खुद को सर पे नहीं चढ़ने देता कि भाई
दैट्स द की।
अगर मुझे हेट्रेड अफेक्ट नहीं कर रहा है तो मुझे ओवर लव भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं काम करने आया था, मुझे एक्सप्रेस करना है तो मुझे वो एक्सप्रेस करने दो, क्योंकि मैं जब तक वो करता रहूंगा तब तक लव और हेट चलता रहेगा। सो लेट मी नॉट गेट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ दिस।
बहुत तगड़ी एक लाइन है पता इस बात से जो मेरी लाइफ, अच्छा ये जो आपने बात बताई ना, इसके लिए गाना है लाइफ में।
ओके
वो मेरा फेवरेट गाना है, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, देव साहब की मूवी का है, हम दोनों मूवी, अमेजिंग क्लासिक हिट। तो उसमें एक लाइन है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये वो चीज है मतलब कि आपने सेंटर पॉइंट पकड़ रखा है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। कि मैं हूं और मेरा पागलपन है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चार गाली बकेंगे तो चार तारीफें भी करेंगे, इन द एंड ऑफ द डे भाई इट्स योर स्टोरी। लोग आएंगे आपके ऊपर टैग भी देंगे, आपको ये भी देंगे, मेरे को बोलेंगे मैं, कोई कोई लड़ेगा कि नहीं किंग हिप हॉप करता है, कोई कहेगा नहीं ये पॉप करता है, कोई ये करेगा, इट्स इन द एंड ऑफ द डे इट्स माय स्टोरी। मैं कहां से आया हूं, मैं कहां हूं और मैं कहां जाना चाहता हूं। 60-70 साल के जब बूढ़े हो जाएंगे बैठा रहूंगा, मुझे पता होगी ये कहानी। मुझे पता होगी, मेरे लिए मेरा पता होना बहुत जरूरी है जिंदगी में कि मैंने क्या करा है। नहीं तो सिर्फ सिर्फ परसेप्शंस है भाई। सिर्फ मुझे पता है मैंने क्या करा जिंदगी में, मेरे घर वालों को पता है मैंने क्या उखाड़ा जिंदगी में और मैं क्या करना चाहता हूँ। अदरवाइज इट्स ऑल परसेप्शन।
यस,
किसी को अच्छी लगेंगी किसी को बुरी लगेंगी, उस हिसाब से मेरी जिंदगी ड्राइव नहीं होती। और मैं हर किसी से ही बोलता हूँ भाई, आई रिस्पेक्ट एंड लव ईच एंड एवरी आर्टिस्ट। बस माहौल इतना खराब है ना भाई, मैं किसी को सजेशन भी नहीं दे सकता, क्योंकि अगेन वो एक टर्म है फ्रेजाइली को।
तू कौन होता है?
पीपल फाइंड हेट, दे डोंट फाइंड द राइट नॉलेज थिंग दैट समवन इज टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। उनको उससे कोई मुद्दा नहीं है। मैंने ये भी अभी देखो, हमने बैठ के डिवाइड कर दी चीजें कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे कमा सकते हो, क्या क्यों जरूरी है क्यों जरूरी नहीं है। हमने ये भी बताया कि क्या चीज नहीं खरीद सकते और क्या चीज ले सकते हैं उसके अराउंड की। घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि पता है क्या भाई दिक्कत उनकी, उनकी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है। आई फील पिटी फॉर
छोटी,
उनकी लड़ाई बहुत छोटी, इसलिए छोटी छोटी बातें उठाते हैं, दूसरों के कान भरते हैं, ये सब होता है। इसीलिए आपके उसमें ट्वीट वाला बवाल बना, ये सारी वो जो समझ पाए ना भाई, मैं समझ पाया क्योंकि मैं रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई छोटी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, तो आप बोलते हो 25 घंटे होते हैं, मैं 26 घंटे काम करता, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने लोगों को कई बार कहता हूँ कि मेरा ये कहना है कि भाई कभी कभी ना मैं बोलता हूँ कि यार ये दिन 24 घंटे का क्यों होता है, ये 48 घंटे का क्यों नहीं होता। कभी कभी मैं इस मूड में होता हूँ यार, 48 घंटे का एक दिन होता तो कितने काम कर लेते यार, 24 घंटे इतने से होता है, खत्म हो जाता है दिन, लिटरली दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। अब जिनके दिन में 24 घंटे पड़े पूरे करने को कुछ भी नहीं, उनके लिए तो लड़ाई बहुत छोटी है ना, वो तो छोटी चीज ढूंढेंगे। दिक्कत पता है क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझता। आपकी बातें उठाई जाती हैं, टोड़ी मोड़ी जाती हैं, क्लिपें काटी जाती हैं, लगाई जाती है, कैप्शन बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं कैंपेन्स, कभी फेवर में तो कभी आपके अगेंस्ट में। अब क्या इससे मैं बदल जाऊंगा? मैं नहीं बदलूंगा, क्योंकि मेरी कहानी मैं जानता हूं, दिस इज माय स्टोरी, ऊपर वाले ने लिखी, उसी ऊपर वाले के ऊपर लिखे हुए, मैं उसी के ऊपर अपनी अपनी वो चला रहा, मैं कुछ नहीं बदल रहा भाई, जो उसने लिख दिया बस उसी के ऊपर मैं अपना पेन चला रहा हूं, लिखे हुए पर बस पूरी खत्म करूंगा लिख के, जहां तक लिखी होगी। 10 साल बाद फिर हमें पॉडकास्ट कर रहे होंगे, ठीक है, ये तो मैंने दिमाग में सोचा, मैं 36 का होता ही फोन खड़का दूंगा। ये तो अभी तो बीच में होने ही है, बट मैं 36 का होता भाई लेट्स गो, बैठते हैं, बताऊं कितनी चीजें हुई कितनी नहीं हुई। यही मजा है यार, इट्स फन, दिस इज लाइफ, एक ही मिली है भाई, यही तो फन है कि क्या सपने देखे, क्या पूरे करे और क्या रह गए। मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में होगा भाई मेरे को जाना एक बार पॉडकास्ट देना, मैं पीछे नहीं हट सकता भाई, ये डील आ रही है तो बहस क्या करनी है मेरे को, ये काम आ रहा है तो ये 400 फालतू मारना है तो सोना नहीं है, करना है, क्योंकि वहां बैठ के जब जवाब देना है ना, तो यार भाई अभी ये काम करा है, अब लगा लो मैंने अपनी प्रैक्टिकलिटी से, अपने अपने प्लान से मैंने दुआएं भी कमा ली है। दुनिया से यहाँ 4 नोट नहीं कमाए जा रहे।
ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच ब्रदर, नाइस गुड प्लग। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लेजर डूइंग अ पॉडकास्ट। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे टेंजेंट्स पे बात होगी,
मजा,
काफी मजा आया।